हैरान हो जाएगा कैसे कैसे चीजें वहाँ है। तो सलाहियत लगाने वाले सलाहियत लगाकर समंदर के तह में अगर कोई चीज है तो वहां से निकाल लाते हैं, पता नहीं होता। तो दुनिया में जिन आदमियों को अल्लाह ने जो जो सलाहियतें जो जो इस्तेदादें दी है, अपने अपने सलाहियतों को अपनी इन चीजों में इस्तेमाल करते हैं और अल्लाह उनको नतीजा भी देता है। ऊपर कुछ नजर नहीं आ रहा था लेकिन जमीन में खजाना छुपा हुआ है वो निकाल रहा है, अपनी सलाहियत का इस्तेमाल किया उन्होंने। हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि लोग भी ऐसे ही काने हैं जैसे माइंस, ऐसे ही काने हैं जैसे जमीन में काइंस होती माइंस होती है। الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، لوگ بھی ایسی صلاحیتیں رکھتے ہیں اور ان کے اندر ایسے جوہر اور ایسے ایسے خزانے چھپے ہوئے ہیں جیسے زمینوں کے اندر خزانے اور جوہر چھپے ہوئے ہیں۔ ہاں پھر کیا کر رہے ہیں کہ تم لوگ ان پر محنت کرو اور ان کے جوہروں کو نکھار لاؤ، ان کے جوہروں کو ان کے اندر سے نکالو، اور دوسرا نکل کر اس کو کام میں لاؤ۔ جیسے زمین کے اندر خزانے چھپے ہوئے ہوتے ہیں ان خزانوں کو آدمی نکالتا ہے، میں نکال کر کیا کریں گے تو اس کو وپراش میں لائیں گے، کس میں لائیں گے؟ وپراش میں لائیں گے۔ ایسے ہی اس دنیا میں بھی جتنے انسان بستے ہیں اس میں الگ الگ صلاحیتیں ہیں، تو اس کو سمجھنے کی کوشش کرو، یہ بات سمجھائی گئی، اور پھر اس کے بعد اس کو کام میں لاؤ۔ کام میں لانے کا کیا مطلب ہوگا کہ جب اس کی صلاحیت کو کام میں لایا جائے گا تو دو فائدے ہو جائیں گے، ایک تو اس آدمی کا خود کا بھلا ہو جائے گا، اس کے پاس اتنی عورت تھی وہ وپراش میں نہیں تھی، اب وہ وپراش میں آ گئی، اب اس کے وپراش کے ذریعے سے جتنی دنیا اور آخرت کی بھلائیاں وجود میں آئے گی یہ اس کے نام عمل میں آئے گا، ہوگا نہیں ہوگا؟ وہ اللہ کی مددگار بن جائے گا، اللہ کے دین کا نصرت کرنے والا بن جائے گا، اور یہ ہر ایمان والے کے ذمے ضروری ہے۔ اللہ پاک نے قرآن میں ہر ایمان والے سے اس بات کا تقاضا کیا کہ وہ اللہ کے دین کا مددگار بن کر جیون گزارے۔ کیا بن کر؟ ہمارے دین کا ہم پر تقاضا یہ ہے، ہر آدمی پر اس کے دین کا تقاضا یہ ہے کہ وہ کیا اس کو کرے گا، اس کا مددگار بنے گا۔ جیسے کسی کی ماں ہوتی ہے، کوئی پوچھے ماں کا کیا حق ہے تو ماں کی سیوا کرو، ماں کی خدمت کرو، اس کا حق ہے۔ کسی کا باپ ہے تو پوچھیں گے باپ کا کیا حق ہے، پڑوسی ہے پڑوسی کا کیا حق ہے، بچے ہیں تو بچوں کا کیا حق ہے، ہوتا ہے نا، الگ الگ سب کے حقوق ہیں، برابر۔ اپنی جان کا کیا حق ہے، اپنی جان کا، کہ یہ باڈی جو ہے وہ اللہ کی دی ہوئی باڈی ہے، اس باڈی کو بیمار نہیں ہونے دینا، اس باڈی کو کمزور نہیں ہونے دینا، یہ باڈی کا حق ہے کہ تندرستی ہزار رحمت ہے، یہ باڈی کا یہ حق ہے۔ اور آخرت کے حق میں اس باڈی پر یہ حق بنتا ہے کہ یہ باڈی جہنم کی آگ میں نہیں جانی چاہیے، دنیا میں اس کو تکلیف نہیں دینا اس باڈی کو، یہ باڈی کا حق ہے۔ اسی لیے خودکشی حرام ہے، خودکشی، اگر باڈی کا کوئی حق نہ بنتا تو کہتے اچھا جاؤ تمہیں کنٹال گئے جاؤ خودکشی کر لو، کر سکتے ہیں؟ کرنا، یہ باڈی کا حق ہے۔ کوئی آدمی بیمار پڑے اور علاج نہ کرے تو پوچھا جائے گا، کیونکہ علاج سنت ہے، یہ اللہ کی دی ہوئی باڈی واپرنے کے لیے دیے، اللہ نے باڈی کا کے لیے دیے، اللہ بولو تو کرے، استعمال کے لیے دیے، یہ اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، ہم سب اس کو استعمال کر رہے ہیں، اس کا ایک ایک پرزہ بہت قیمتی ہے، بہت مہنگا ہے۔ آج کل بیماری ہوتی ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ کتنا مہنگا ہے، چھوٹی چھوٹی بیماری میں کتنے لاکھ پیسے چلے جاتے ہیں، تو یہ باڈی بہت مہنگی باڈی ہے۔ یہ کس کی ہے؟ اللہ کی، ہم کو اللہ نے کہے کے لیے دی ہے، یہ جیسی ہے ایسی اس کو اللہ کے پاس واپس لے کر جانا ہے، یہ اس باڈی کا حق ہے۔ دنیا میں اس کو نقصان نہیں ہونا چاہیے، اور آخرت کے حق میں یہ باڈی جہنم کی آگ سے بچ جائے، یہ اس کا تقاضا ہے کہ یہ آخرت میں ایسے لے کر جاؤ کہ آخرت میں دو ہی جگہ ہیں، یا تو جنت ہے یا تو جہنم ہے، تیسری کوئی جگہ نہیں آخرت میں۔ تو اس باڈی کا حق ہر انسان پر یہ بنایا کہ وہ ایسی محنت کرے اپنی باڈی سے کہ وہ آخرت میں جانے کے بعد جہنم میں نہیں جانی چاہیے۔ جیسے ان سب چیزوں کا ہم پر حق بتایا، ایسے ایک حق ہم پر ہمارے اللہ کا ہے، ایک حق ہم پر ہمارے رسول کا ہے، और एक हक हम पर हमारे दीन का है. किसका है? हमारे दीन का. कब्र में जाने के बाद इन तीन चीजों का सवाल होगा, और सबसे पहले अल्लाह के हक का, फिर उसके बाद नबी का, और तीसरा जो सवाल होगा वो किसका? अपने धर्म दीन का. बहुत बड़ा मजमा दुनिया में ऐसा मिलेगा जो 50 साल से मुसलमान है, 60 साल से, 70 साल से, 40 साल से. उसको पूछो, भाई तेरे ऊपर तेरे अल्लाह का क्या हक है? तो वो नहीं उड़कता, उसको खबर नहीं है. उसको पूछो खड़ा करके कि भाई तो जरा बताएगा कि तेरे अल्लाह का तुझ पर क्या हक है? उसे कुछ नहीं पता. दूसरा उसको पूछो, तेरे नबी अलैहि सलाम का तुझ पर क्या हक है? तू ये दावा करता है कि मेरे नबी अलैहि सलाम से मेरा रिश्ता, मेरा संबंध है, और मैंने अपने नबी को नबी माना है. तो उसको पूछे, भाई तेरे नबी अलैहि सलाम का तुझ पर क्या हक बनता है? उसको बेचारे को बहुत बड़ा मंजमा वो है जिसको पता ही नहीं है. और तीसरा, हर आदमी से कब्र में जो पूछा जाएगा वो उसके इस्लाम के लिए पूछा जाएगा कि तेरे इस्लाम का तुझ पर क्या हक बनता है. तो दुनिया में एक बहुत बड़ा मजमा वो है जिनको अपने इस्लाम का अपने ऊपर क्या हक है वो नहीं पता. इस्लाम का हक हर आदमी पर यह बनता है कि इस्लाम दुनिया में फले फूले, इस्लाम दुनिया में परवान चढ़े, इस्लाम को चलने के लिए रास्ता बनाना. इस्लाम चलने के लिए जैसे झाड़ उगने के लिए आदमी हल चलाकर बनाता है जमीन को नरम, तो इस्लाम का हक बनता है कि उसकी नुसरत करें. क्या करें? इस्लाम की नुसरत की जाए. तो दुनिया में हर आदमी को अल्लाह ने अलग अलग सलाहियतें दी है. दुनिया में लोगों को अल्लाह ने अलग अलग सलाहियत दी है. क्या दी है बोलो? अलग अलग सलाहियत दी है. वो सलाहियत उसकी बेचारे के ठिकाने लग जाए, उसकी वो सलाहियत काम आ जाए. क्या हो जाए बोलो? क्योंकि हर आदमी को अल्लाह ने अलग अलग सलाहियत दी है, अगर उसको ठिकाने लगाएंगे तो वो काम आ जाएगी, और अगर ठिकाने नहीं लगाई गई तो वो कहीं ना कहीं वपराश में तो जरूर आएगी. हर आदमी का वपराश होता है, हर आदमी का वपराश होता है. मुझे देंगे? जज़ाकअल्लाह खैरा, शुक्रन. दुनिया में ऐसा कोई भी आदमी है नहीं है कि जिसका वपराश ना होता हो. सबका वपराश होता है, कोई ऐसा नहीं है जिसका वपराश ना होता हो. है ना? अगर वपराश होने की जगह हो गया तो ठीक है, मजे की बात है. वरना कोई ऐसा नहीं है कि जिसका वपराश ना होता. वो अपनी बुद्धि को वापरता है, अपनी सोच को वापरता है, अपने जज्बात को वापरता है, अपने पास जो चीजें हैं वो सबको, सलाहियत को, जान को, माल को, सबको वो वापरता है. है ना? कोई ऐसा है जो ना वापरता हो? कोई सही जगह वापरेगा, कोई गलत जगह वापरेगा, कोई वापरने की जगह नहीं वापरेगा वो भी खोटा. वापरने की जगह न वपराई वो भी खोटा. तो दुनिया में हरेक का वपराश होता है. हमारे नबी अलैहिस्सलाम के दीन में हमदर्दी है. इस हमदर्दी के रास्ते से लोगों को जमा करके ये समझाया जाता है कि हरेक का वपराश भी हो और उसका सही वपराश कैसे हो जाए, इसकी फिक्र की जाती है कि हरेक का वपराश हो और हरेक का वपराश कैसा हो? सही हो. ऐसा सही उसका वपराश हो कि जब तक वो दुनिया में जिए वो अल्लाह को वो बंदा पसंद आ जाए, और जब वो मरे तो उससे अल्लाह राजी रहे. जब वो मरे तो उससे दुनिया में वो लोग, बाज लोग ऐसे होंगे कि जब वो दुनिया में जीते होंगे तो अल्लाह को अच्छे नहीं लगते होंगे, अल्लाह की निगाहों से गिरे हुए होंगे. दुनिया में ऐसे लोग होते हैं कि वो अल्लाह की निगाहों से गिरे हुए, और जब वो मरते हैं तो अल्लाह को उनका मरना अच्छा नहीं लगता. जाओ ठीक है, मर गए, मर गया मरदूद, न फातिया न दरूद, ऐसा मर गया मरदूद, न फातिया न दरूद, कि उसके मरना भी अच्छा नहीं लगता. भाई दुनिया में अल्लाह ने कुरान में वाकयात किए अगले कौमों के नाफरमानों के मरने वालों के, तो उनके जीने को भी, जिनका जीना भी अच्छा अल्लाह को नहीं लगा और मरना भी अच्छा नहीं लगा. क्यों ऐसा? क्यों? उन्होंने अपना वपराश गलत कर लिया, अपना इस्तेमाल गलत कर लिया. ये दीन में जो हमदर्दी है उस हमदर्दी के रास्ते से ये बात समझाई जाती है कि हर आदमी की हमदर्दी की जाए, खैरखाही की जाए, कि हर आदमी ऐसा जीवन जिए कि उसका जीना अल्लाह को पसंद आ जाए. अगर अल्लाह को उसका जीना पसंद आ गया तो भाई अल्लाह का बनाया हुआ है. अगर वो अच्छा जिएगा तो अल्लाह का रहमो करम उस पर बढ़ जाएगा, अल्लाह की छत्र छाया में आ जाएगा वो. کس میں جائے گا؟ اللہ کے رحم و کرم میں ہمارے گھر میں ہم دیکھیں ہمارے تین چار بیٹے ہوں, بھروسہ پاترا چھوکرا ایک ہوا اور ایک نہ بھروسہ پاترا نہ ہو, تو جو بھروسہ پاترا ہے اس بیٹے کے ساتھ باپ کے ساتھ ویوہار کرتا ہے, جو چھوکرا بھروسہ پاترا ہے کہ اس کو اپنا سارا بتا دے گا, پراپرٹی بتا دے گا, حساب کتاب بتا دے گا, بینک کا اکاؤنٹ بتا دے گا, لیور دیور کس کے ساتھ کیا ہے وہ بتا دے گا, سب اپنی چھوٹی چھوٹی باتوں میں اپنے ساتھ شریک کر لے گا. وہ کوئی چیز مانگے گا تو اس کو دے دے گا کیونکہ بھروسہ پاتر ہے. بولو صحیح غلط. لیکن جو چھوکرا بھروسہ پاتر نہ ہو تو اس کو کوئی چیز دے گا؟ بھائی بھروسہ پاتر آدمی نہیں ہے. اچھا کوئی بیٹا ایسا ہے کہ جس پر بھروسہ کیا اور اس نے وشواس گھات کیا, بھروسہ بنے کیا مگر اس چھوکرے سے وشواس گھات ہوا. اپنے وہاں کہتے ہیں بھروسے کی بھینسوں نے پاڑے جنے, کہ اس پاڑی سے بہت امید تھی کہ پاڑی دے گی تو اس کے اور بچے ہوں گے, اس نے تو پاڑا دے دیا. تو اپنے وہاں کہتے ہیں کہ بھروسے کی بھینسوں نے پاڑے جنے, کہ کوئی چھوکرے نے وشواس گھات کر لیا. تو اب بتاؤ کہ ابا کیا کرے گا؟ جو جن چیزوں کا اس پر وشواس کیا تھا اور کچھ چیزیں اس کو دی تھی بھروسہ کر کے, وہ چیزیں اس کو بڑھا دے گا جو یا جو دی ہے وہ واپس لینے کی فکر کرے گا؟ ذرا بولت کرے. کیوں کہ ابھی اس کے پاس کچھ نہیں تھا, بھروسہ کر کے تھوڑا دیا اور یہ اس میں ایسا کرتا ہے تو وہ یہ بڑھائے گا نہیں نعمتوں کو, بلکہ جو دیا اس کی بھی کوشش کرے گا اس کے پاس سے لے لو. اور بھروسہ پاتر ہے تو کہ پہلے دی تھی اس میں بھی اس نے وشواس گھات نہیں کیا, بھروسہ پاتر کام کیے, اگر دوبارہ ڈیمانڈ کرے گا دوبارہ بڑھا دی جائے گی. ہوتے ہوتے ایسے سنجوگ بن جاتے ہیں کہ ساری چیزیں اس کے حوالے کر دیتے ہیں. آدمی موت سے پہلے اپنے بھروسہ پاتر چھوکروں کے حوالے دھندا کر دیتے ہیں, پراپرٹی کر دیتے ہیں, کیوں؟ بھروسہ پاتر ہے. بولا ایسا ہوتا نہیں ہوتا. ایسے اس دنیا میں جینے والے دو قسم کے لوگ ہیں, اس دنیا میں جینے والے ایک وہ لوگ ہیں جن سے اللہ خوش ہیں راضی ہیں, اور ایک وہ لوگ ہیں جن سے اللہ ناراض ہوتے ہیں. ایک وہ مجمع جن سے اللہ راضی ہے اور ایک وہ مجمع جن سے اللہ ناراض ہوتے ہیں. اللہ چہرے دیکھ کر کیسے اسے راضی نہیں ہوتے؟ اس کا چہرہ بہت اچھا ہے تو راضی ہو جاؤ, اس کا چہرہ اچھا نہیں ہے تو ناراض ہو جاؤ. ہم اپنے بیٹوں سے چہرہ دیکھ کر راضی ہوتے ہیں, چہرہ دیکھ کر کون کے کرتوت سے, کس کے کرتوت کیسے ہیں؟ کرتوت میں لوگوں کو تولا جاتا ہے. کس میں تولا جاتا ہے؟ اللہ بولو تو کھڑے. کرتوت سے لوگوں کو تولا جاتا ہے, کسی کو باڈی سے نہیں تولا جاتا کہ 100 کلو کا نہیں ہے, 50 کلو کا نہیں ہے, 95 کلو کا. ایسے تولتے ہو, ماڈل دیکھ کر تولتے ہو. دنیا میں انسانوں کو جو دیکھا جاتا ہے وہ ان کے کرتوت سے, کہ کون کیسی کرنی کا ہے, کس کی کرنی کیسی ہے. اللہ کے وہاں بھی لوگوں کو جو تولا جاتا ہے وہ ان کے کرنی سے, ماڈل دیکھ کر نہیں, خاندان دیکھ کر نہیں, ان کی کرنی کیسی ہے. بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کالے کلوڑے تھے, کالے کلوڑے حبشی تھے, چپٹی ناک تھی, کرنی بہت زوردار تھی, کرنی بہت زوردار تھی. اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے سگے چچا, سگا چچا, وہ مکے کا متولی تھا. ہوتے ہیں مسجد کے متولی اور فلاں کے ٹرسٹی, تو مکے کے ٹرسٹی تھے. اور گورا چٹا تھا, ہینڈسم. ابو لہب کہتے ہیں سلگتا ہوا انگارا, لہب سلگتا ہوا, کو ایسا انگارا جیسا تھا کہ اس کو لوگ کہتے تھے ابو لہب کے سلگتا ہوا انگارا, جیسے یہ ہوتا ہے زوردار, ایسا زوردار تھا. لیکن اللہ کو اچھا نہیں لگتا تھا. کیوں؟ اس کی کرنی اچھی نہیں تھی. کیا اچھی نہیں تھی؟ اس کی کرنی اچھی نہیں تھی. تو یہ دیکھنے میں خوبصورت گورا چٹا ہے اور یہ کالے کلوٹا ہے, لیکن اس کی کرنی اچھی ہے اور اس کی کرنی ٹھیک نہیں ہے. تو یہ کالا کلوٹا اللہ کو اچھا لگ گیا اور یہ گورا چٹا اللہ کی نگاہوں میں گر گیا, ختم ہو گیا. اللہ نے قرآن میں ایک سورت اتاری جس میں وہ نبی کا چچا ہے, سگا چچا ہے, لیکن اس نے نبی کا ویروھ کیا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کی. حضور کی دو لڑکیوں کے نکاح اس کے دو لڑکوں کے ساتھ ہوئے تھے, اس نے دونوں لڑکیوں کو طلاق دے دی. اتنی زیادہ نبی کی شان میں گستاخی کی اس نے, بدتمیزی کی, خباثت کی, اس کی حرکتیں بری ہو گئی. تو اللہ اس سے ایسا ناراض ہوا کہ اللہ نے ایک سورت اتاری, تبت یدا ابی لہب, کہ بربادی ہو ابو لہب کے لیے, سگا چچا ہے. تو کسی کا عالی نصب ہونا, کسی کا گورا چٹا ہونا, یہ اس کو مہنگا نہیں کرتا, اس کی کرنی اس کو مہنگا کرتی ہے. کیا چیز بولو؟ کرنی. بھروسہ پاترا اس کی کرنی اس کو بناتی ہے کہ یہ بھروسہ پاترا ہو گیا, اس کی کرنی اچھی ہے. جب اس کی کرنی پر اللہ کو وہ پسند آ جاتا ہے, تو جیسے ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں کہ جس جو بیٹے پر ہمیں اعتماد ہو جائے, بھروسہ, اس پر ہماری مہربانی بڑھ جاتی ہے. نہیں بڑھ جاتی؟ ارے بولو, بڑھ جاتی ہے. سگی بیوی پر بھروسہ ہو جائے تو آدمی اس کے حوالے سب چیزیں کرتا ہے, اور بھروسہ نہ پڑے تو اس کو جتنا اس کے ساتھ کرنا ہے اس سے زیادہ اس کے ساتھ بھی نہیں کرتا. تجوری کی چابی دینی چاہیے کہ نہیں دینی چاہیے, اس کے کھاتے میں بیلنس رکھنا چاہیے کہ نہیں رکھنا چاہیے, اس کے والے کباٹ میں کتنے پیسے رکھنے چاہیے, وہ گنا کر بھگا کر اس کی کرنی سے کرتا ہے. بولو کھری بات کھوٹی بات؟ یہ دنیا والے جو نظام ہے نا, وہ اللہ کا پڑگا ان پر پڑتا ہے. اللہ کے جو صفات ہیں, اللہ کی جو عادتیں ہیں, اللہ نے وہ چیزیں بندوں میں منتقل کی ہے. تو اللہ کا نظام بھی ایسا ہی ہے, اللہ کا نظام بھی ایسا ہی ہے کہ اگر کوئی آدمی ایسا جیون جیتا ہے کہ جس کی کرمیں اچھی ہے اور اللہ کو پسند آتا ہے, تو پھر یہ دنیا ساری کی ساری اللہ کی ہے. اللہ تو چاہتے ہیں کہ اس دنیا میں امن پھیلے, اس دنیا میں انصاف ہو, اس دنیا میں لوگ سکھ شانتی سے رہیں, اللہ تو چاہتے ہیں. تو پھر اللہ ایسے لوگوں کو راجپاٹ دیتے ہیں, ایسے لوگوں کو آگے بڑھاتے ہیں. ہاں, اور اللہ پاک زمینوں کا ان کو مالک بناتے ہیں, جیسے صحابہ کو بنایا. صحابہ کے پاس کچھ نہیں تھا, صحابہ کے اوپر کوئی حکومت کرنے کو بھی تیار نہیں تھے, لیکن اللہ نے ان کو بہت بڑی دنیا کا مالک بنایا. کتنا مالک بنایا پتا ہے ان کو؟ کتنا مالک بنایا؟ تین کھنڈ کا. ایک کھنڈ کتنا ہوتا ہے؟ پورے بانگرول جتنا, برابر. اکھا کھنڈ کتنا ہوتا ہے؟ اللہ بولت کریں, ایک کھنڈ کتنا ہوتا ہے؟ مانگرول جتنا, پورا مانگرول اس میں آ جائے, برابر ہے. تو کتنا یہ کہہ رہے ہیں, کئی کنٹری ملا ہے تو ایک کھنڈ تیار ہو. کئی کنٹری کتنے کتنے ہوتے ہیں پتا ہے؟ ایک ایک کنٹری میں 50-50 دیش ہوتے ہیں. اب ہمارے ایک کھنڈ گنو, ہندوستان, پاکستان, افغانستان, ازبکستان, تاجکستان, ترکمانستان, ترکستان, آدھا ترکی, اور اوپر منگولیا, اوپر چائنا, اوپر انڈونیشیا, ملیشیا, تھائی لینڈ, اور اوپر برما, بھوٹان, نیپال, اور اوپر سیلون. او ہو 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 ہو, اتنے سارے ملاؤ. ابھی میں نے چند گنائے, وہ پتہ نہیں ایسے کتنے. ایسے ایک ایک کھنڈ میں ہزار, کئی شہر. ایک افریقہ کھنڈ, 54 دیش ہے اس میں. کتنے دیش؟ 54. اور ایک ایک دیش بہت بڑا بڑا, کانگو کتنا بڑا ہے, او ہو ہو. سینٹرل افریقہ, ایسٹ اس کا دیکھو, اس کا ویسٹ دیکھو, اس کا ایسٹ ویسٹ سینٹرل, بہت بڑا بڑا. ایک ایک دیش کتنا بڑا نہیں ہوتا ہے. اوپر نیچے سے شروع کرو, ساؤتھ سے شروع ہوتا ہے, ساؤتھ کے اوپر اس کے اوپر گیبون آ گیا, اس کے اوپر زامبیا, زمبابوے, موزمبیک, ملاوی, بوتسوانا, سوئٹزرلینڈ, اس کے اوپر اور آ جاؤ تو, اور اوپر چلتے جاؤ تو کینیا, پھر اس کے بعد سینٹرل افریقہ, پھر اس کے بعد حبشہ, پھر اس کے بعد ویسٹ میں چلے جاؤ سیرا لیون, آئیوری کوسٹ, پھر اس کے اوپر چلے جاؤ اور اوپر ویسٹ میں چلے جاؤ گنی بیساؤ, گنی کونا کری, پھر اس کے اور چلے جاؤ تو او ہو, گن بھی نہیں سکیں گے. ایک ایک کھنڈ میں اتنے دیش. حضرت صحابہ کو اللہ نے ایسے تین کھنڈ کا مالک بنایا. کتنے کھنڈ کا؟ تھوڑے دنوں میں بنا دیا, تھوڑے دنوں میں. کیوں؟ وہ بھروسہ پاترا ہو گئے اس کے لیے, وہ بھروسہ پاترا ہو گئے. یہ ادھم نہیں مچائیں گے. کیا نہیں مچائیں گے؟ ورنہ جو لوگ ایسے ہوں کہ جن جو بھروسہ پاترا ہوں اور ان کے پاس کچھ آتا ہے, وہ دودھم مچاتے ہیں. کیا مچاتے ہیں؟ اللہ بولو تو خیر. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں, ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها, کہ اگر بے دینی کے ساتھ ان کے پاس کچھ آ جائے گی تو جیسے ہمارے گھر میں چھوکرا ہو, آڑا اوڑا ہو, تو وہ دھم مچاتا ہے. वो साइलेंसर निकालो तो फट 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 उधम मचाया उसने, बाबा के सामने आंखों तेवर बदल देते हैं। अपना सगा छोकरा है लेकिन उसको आवड़त नहीं है, उसके हाथ में कुछ चला गया घर में उधम मचाता है, नहीं मचाता तो ये उधम मचाते हैं। उधम पता नहीं है, बोलने के टोन बदल जाते हैं, रहनी करनी बदल जाती है, चाल बदल जाती है, नहीं बदलना। साइकिल पर सीधा सीधा जाता था, नल्लमिया ने बाइक दिया तो वहां का बैठता है। अरे वहां का क्यों गया बाइक पर? का कुछ नहीं, उसकी पाचन शक्ति छोटी है कि इसको बाइक भी हजम नहीं होती। क्या नहीं होती? बाइक हजम नहीं हो रही। और बाइक वाले को अल्लाह फोर व्हीलर दे दे तो फिर तो कहना ही क्या, क्या हजम नहीं हुई इसको, फोर व्हीलर हजम नहीं हो रही। हमारा छोकरा सीधे सीधे रोड पर नहीं जाता था, छह दिन के बाद यूं चलता है। इसको क्या हो गया भाई, हाथ बैंड क्यों खा गए इसके? को छह दिन से जिम जाता है ये। कितने दिन से? छह दिन से जिम जाता है, यूं चलता है। अल्लाह अभी बॉडी बिल्डर बनते बनेगा, छह दिन की जिम भी इसको तो हजम नहीं होती। तो इसकी ये बैठने की पाचन शक्ति ओछी है। कैसी है बोलो पाचन शक्ति? के इसका टोन बदल जाता है। दो सगे भाई एक मालदार हो गया, मुकद्दर से नहीं गरीब रह गया, तो अपना सब मालदार भाई गरीब से बात करता है तो देखने का उसका स्टाइल। हाँ मोहल्ले का मालदार मोहल्ले के गरीब से बात करता है तो उसकी स्टाइल देखने की, का टोन बदल गए। किसी की कुर्सी बड़ी हो गई तो टोन बदल। अल्लाह भाई तू तो रोज माँ का रोज मनी के कतरे में से पैदा हुआ है, और भाई तेरा जिस्म क्या है? कहीं गंद बनाने की फैक्ट्री। कहीं सफेद कपड़ों से तू कहीं सफेद हो गया? आदमी का जिस्म क्या? का गंद बनाने की फैक्ट्री। क्या बनाने की? गंद बनाने की। उसके जिस्म में से गंद के अलावा कुछ नहीं निकलता। ये तो अल्लाह ने उसके ऊपर ये इसके ऊपर बहुत खूबसूरत जिस्म चढ़ा दिया, वरना आप देखो उसके जिस्म से जो निकलता है वो गंदा निकलता है। इस संजय के रास्ते से तो गंदा है ही, पेशाब के रास्ते से तो पसीना खुशबूदार होता है, कान में से जाफरान निकलता है, मुश्क निकलता है, क्या निकल, मेल, नाक में से मेल, मुंह में से बदबू आती है। आदमी ब्रश न करे, मिसवाक न करे, बदबू आती है। बात कैसे से करे तो आदमी दूर हो जाता है। हाँ खूबसूरत कपड़े पहनता है और दूसरे दिन कपड़ों में बदबू आ जाती है, तो हमारे में है क्या? दो तीन दिन सर न धो तो सर में क्या क्या हाल बनता है? तो हमारे अंदर गंदी ही गंद है, लेकिन अल्लाह पाक ने इस सारी चीजों को इन चीजों से छुपा दिया है। इस हकीकत को हरेक को नबी ने समझाया है, अल्लाह ने कुरान में समझाया है कि ओ भाई तुझे बहुत गंदे पानी से अल्लाह ने पैदा किया है, तो तेवर का ही वो खराब करता है। और नबड़ा कितना है तू? नबड़ा कि जरा सर्दी बुखार लग जाए तो तेरा जिस्म टूट जाएगा। आदमी को बुखार आता है तो ढीला ढस हो जाता है। अपने कहते हैं ना ताव तो भागने भी मारी ना खेम, ढीलो करी दे। जरा सर्दी में हमारा हिसाब पूरा हो जाए, जरा खांसी में सीना तक दर्द कर जाए। बोलो ऐसा होता है? नहीं होता है। हम नबड़े पैदा हुए हैं। हम कैसे पैदा हुए हैं? थोड़े दिनों की अल्लाह ने ये ताकत सबको दी होती है। ये दीन के रास्ते से ये सारी बात अहिक को समझाई जाती है कि भाई थोड़े दिनों का जीवन है, असल जो जीवन है वो मौत के बाद का जीवन है। हमारा ये जीवन मरने के लिए है, हम सबको मर जाना है, और मौत के बाद का जो जीवन है वो जीने के लिए है। काय के लिए है? और मौत के बाद का जीवन इतना बड़ा है कि उसका कोई छेड़ा नहीं है। बहुत बड़ा जीवन, उसका कोई छेड़ा नहीं। हमने वो जीवन देखा नहीं है, वो जीवन हमको हमारे नबी ने समझाया है, हमारे नबी रसूल ने वो जीवन समझाया है। हमने देखा नहीं है इसलिए उसकी हमें फिक्र नहीं होती। जैसे एक बच्चा माँ के पेट में हो, उसको कोई कहे कि तू जिस दुनिया में है वो इतनी है, लेकिन जिस दुनिया में तुझे पैदा होकर आना है वो ऐसा वो ऐसा वो ऐसा वहाँ ये है वो है, वो बेचारा माँ के पेट में है, कुछ खबर नहीं पड़ेगी उसको, लेकिन जब आएगा तो सब देख लेगा, जब आएगा तो सब देख लेगा। ऐसे अभी हम इस दुनिया में है, मौत के बाद की चीजों का हमें फिक्र नहीं होता। जब जाएंगे तो सब देख लेंगे। उस वक्त आदमी अल्लाह से तमन्ना करेगा मुझे दोबारा लौटा दो, मुझे दोबारा लौटा दो, अब ऐसा करके नहीं आऊंगा, अब ऐसा करूंगा ऐसा करूंगा। या तमन्ना करेगा काश के मैं मिट्टी हो जाता, जैसे और सारी मखलूक मिट्टी हो जाएगी ऐसे में मिट्टी हो जाता। लेकिन ये नामुमकिन तमन्नाएं होगी, सब तमन्नाएं नामुमकिन होगी। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि कब्र में ऐसे हालात पेश आते हैं अगर लोगों को पता चल जाए तो लोग अपने मुर्दों को दफनाना छोड़ दें। इतने खतरनाक हालात पेश आते हैं, इतने खतरनाक हालात कब्र में पेश आते हैं। हम रोजाना उस मौत के करीब जा रहे हैं, रोज उस मौत के करीब जा रहे हैं, इस दुनिया से दूर हो रहे हैं, और अचानक ये हमारा जिस्म है ना पानी के पपोटे की तरह है, एकदम फूट जाएगा, पट देकर फूट जाएगा। शैतान आदमी को ये उम्मीद दिलाता है, ना भाई तेरा भी बहुत लंबा जीवन है। क्या उम्मीद दिलाता है बोलो? अरे बोलो, शैतान क्या उम्मीद दिलाता है? कि तेरा जीवन अभी बहुत लंबा है, तुझे बहुत लंबा जीवन जीना है। क्या मतलब? कि अभी तुझे ये सब काम कर नहीं करेगा तो चल जाएगा, अभी बाद में तू कर रहे ना, कोई वादा नहीं है। शैतान उससे टलवाता है, अभी नहीं बाद में, अभी नहीं बाद में। जो बाद बाद में करते हैं ना, उनसे कभी काम नहीं होता। भाई आज एक पारा पढ़ने का था, उसने नहीं पढ़ा। अब कल आज के बजाय कितने जमा हो गए, एक आज का और एक कल का। वो कहते कल पढ़ लूंगा। अरे भाई एक था, दो दो पढ़ नहीं सका, कल दो कैसे पढ़ लेगा? एक साल की जकात देनी थी, वो नहीं दे सका, क्या आते वर्ष दे दूंगा। अरे एक साल की थी, वो नहीं दे सका, दो साल की जमा हो जाएगी, कैसे दे देगा? तो शैतान उससे टलवाता है। तो टालते टालते आदमियों के जिम्मे बहुत कर्जा चढ़ जाता है इन चीजों का। बहुत सारे लोग दुनिया में बड़े बड़े प्लान बनाकर होते हैं, फैक्ट्रियों के प्लान, घरों के प्लान, और बच्चों के पता नहीं क्या क्या प्लान, और उस साल उनका नाम मुद्दों में आ चुका होता है। क्या वरसा भाई ने उठाई लेवाना छे, क्योंकि हर साल का जो होता है लिस्ट, 15 शाबान से लेकर 15 शाबान तक का वो फरिश्तों को अल्लाह दे देते हैं। अभी इस साल के 15 शाबान आने में देर है, अभी रजब आया, अभी ये जमा दिल उखरा, फिर उसके बाद रजब न शाबान, अभी 2.5 महीने बाकी है 15 शाबान को। गई साल जो 15 शाबान थी, वो 15 शाबान में इस साल के 15 शाबान तक के बहुत सारे लोगों का वाउचर फट चुका है, पांदड़े पीले हो चुके, वो गिरने वाले हैं। वो उनका वाउचर फाड़ कर अल्लाह ने फरिश्तों को दे दिया, इसका फलां तारीख में, इसका फलां तारीख में, इसका फलां तारीख में। तो 15 शाबान जब तक तो बहुत सारे चले गए। बोलो गए कि नहीं गए? हो सकता है हम बैठे हुए में भी किसी का वाउचर फट चुका हो, हाँ हमको पता है, लेकिन शैतान ये आशा दिलाता है, नहीं अभी तो तेरा बहुत लंबा जीवन बाकी है, बहुत लंबा जीवन बाकी है। ये आशाओं पर हमें आखिरत की तैयारी में शैतान लगने नहीं देता। हो सकता है मेरा भी वाउचर फट चुका हो सकता है, अपने से किसी का फट चुका हो, अल्लाह सबको आफियत के साथ अच्छी जिंदगी दे, लेकिन हमें से किसी को नहीं पता। हम लोग एक इज्तिमा में गए, मेहता इज्तिमा में गए, मेहता के, तो वहाँ जिसकी जमीन थी उसने मुलाकात की। जब हम इज्तिमा में गए तो इज्तिमा में मुलाकात की, उसके बाद थोड़ी देर बाद कहे नमाज जनाजा पढ़ने की, किसकी? का जिसने दोपहर में तुम्हारा अवकार किया था उसी की पढ़ने की। ओ वो इंतकाल हो गया। हमारे वहां एक साहब लोगों को गुसल देते थे, रमजान का महीना था तो हफ्तावार इज्तिमा जोर बाद होता था, तो वो आए तो मैंने कहां से आए, क्या हमारे फला मोहल्ले में एक आदमी का इंतकाल हो गया, उसकी नमाज जनाजा, उसका इंतकाल हो गया, उसको गुसल देकर आया हूँ। मगरिब के बाद नमाज पढ़ने गए तो एक के बजाय 2 जनाजे थे। अरे दूसरा किसका है? क्या जिसने गुसल दिया था ना उसका जनाजा है, जिसने गुसल दिया था। हाँ यूपी में एक जगह पर एक आदमी ने ऐलान किया, फला आलू वाले उनका इंतकाल हो गया, नमाज जनाजा इतने बजे पढ़ी जाएगी। जब नमाज जनाजा हुए तो एक के बजाय 2 जनाजे। अरे भाई दूसरा किसका है? क्या जिसने दोपहर में ऐलान नहीं किया था, ये उसका जनाजा है। कि मौत इतनी करीब है, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मौत इतनी करीब है, तुम्हारी सांस की नड़ी से भी ज्यादा करीब है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक सलाम फिराऊं तो दूसरी फिरा सकूंगा नहीं, वो पता नहीं है, मैं निवाला उठाऊं और रख सकूंगा वो मैं या नहीं। लोग बयान करते करते मर जाते हैं। अभी एक मौलाना साहब खुतबा दे रहे थे जुमा में और अल्लाह के कलमे का बयान कर रहे थे, कलमे की कितनी कीमत है, और कहा अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वाश, और यूं ही चले गए, यूं ही उंगली थी और यूं चले गए। अभी एक मुल्क में एक वजीर था, पार्लियामेंट में होते हैं ना, वो अपना भाषण दे रहा था और भाषण देते देते मर गया। देखा आप लोगों ने, भाषण देते देते चला गया। तो कोई नहीं जानता कि किसका परपोटा कब फूटने वाला है, उसका वाउचर फट चुका है। तो फिर क्या मतलब कि ये तबलीग की मेहनत से हर एक को कहते हैं सजाग जीवन जियो। कैसा जीवन? जरा जोर से बोलो, सजाग जीवन, जागरूक जीवन जीने वाले बन जाओ। कि कोई आदमी धोखा ना खाए, ये अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि दुनिया धोखा खा, यहाँ इस दुनिया में लोग धोखा खाते हैं, तुम धोखा मत खा जाना, यूं कहते हैं। ला यगुर्रन्नकुम अल-हयात अद-दुनिया वला यगुर्रन्नकुम बिल्लाहिल गुरूर, कि बहुत सारे धोखा खाते हैं, तुम भी उन धोखा खाने वालों में धोखा मत खा जाना। तो क्या मतलब है इसका धोखा न खाने का? मतलब कि अल्लाह ने हर आदमी को अलग अलग सलाहियत दी है, अलग अलग इस्तेदाद दी है, अल्लाह ने अलग अलग लोगों को वर्ग वाला बनाया है। कैसा बनाया? बोलो तो खरे, तुम नाराज हो तो काहे को नहीं बोलते हो? अल्लाह ने कैसा बनाया?
वग वाला, वग बड़ी चीज है, बहुत सौ को बड़ी ओड़खण वाला बनाया, ओड़खण बहुत बड़ी चीज, ओड़खण मोटी खान, ओड़खण मोटी खान। हर आदमी ये सोचे कि मुझे जो मिला है ये मेरी सलाहियत से नहीं मिला, मुझे मेरे रब ने दिया है। किसने दिया है? वरना स्कूल में बहुत सारे हमारे साथ छोकरे पढ़ने में साथ थे, पढ़ने में हमारे साथ थे, उनकी वग नहीं बनी है, हमारी कैसे बन गई? अल्लाह ने बनाई है। किसने बनाई? हमारी वग बनी वो अल्लाह ने बनाई है। हमें कुर्सी वाला बनाया अल्लाह ने बनाया, पैसों वाले बने अल्लाह ने बनाया है, ओड़खण वाले बने हैं तो किसने बनाया? दुनिया में लोग अपने ओड़खण को अपने काम अपने 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 रोटी सेकने के लिए वापरते हैं। काय के लिए वापरते हैं? अपनी ओड़खण है। जब वो फोन करी तो जा तू मारू नाम ले लेजे, अपने अपने अपनी समझ उसने वापर ली। तो दुनिया में हर आदमी अपनी वग वापरता है, अपनी समझ वापरता है, अपनी सलाहियत वापरता है, और उनके सामने अभी खाली दुनिया का जीवन होता है तो दुनिया के जीवन के काम निकालने के लिए अपनी ओड़खान, अपनी वग, अपनी सब चीजें वापरता है। ईमान वालों से बात कही जाती है कि अपनी वग को अपनी आखिरत बनाने के लिए इस्तेमाल करो, अपने वग के लिए इस्तेमाल करो, अपनी आखिरत बनाने के लिए। दुनिया भाई आवाज पहुंच जाएगी ना, जोर से बोलो। दुनिया में आवाज आ रही है ना?
आ रही
है। ये दीन की मेहनत के रास्ते से मुख्तलिफ मौकों पर मुख्तलिफ तबकों को जोड़ते हैं, कभी औरतों को जोड़ लिया, कभी बच्चों को स्कूल पढ़ने वाले जोड़ लिया, कभी उमूमी मजमे को, और कभी आप जैसे चौधरियों को, आप जैसे वडीलों को, आप जैसे बासलाहियत लोगों को, है ना? ये भाई जिनकी वर्ग है, जिनकी उठान है, जिनकी पहुंच है, कभी आप जैसे लोगों को भी जोड़ लेते हैं। और आपसे किसी चीज का सवाल नहीं है, पानी के गिलास का भी सवाल नहीं है कि आप हमको पानी का गिलास पिलाओ, सब चीजें आपको मुबारक। हम तो आपकी हमदर्दी चाहते हैं, हमदर्दी ये चाहते हैं।
आफाक ने आपको इस दुनिया में वर्ग वाला बनाया, बड़ा बनाया, इज्जत वाला बनाया, तो हम तो ये चाहते हैं अल्लाह आपको आखिरत में भी वर्ग वाला बना दे, अल्लाह आपको आखिरत में भी इज्जत वाला बना दे, और अल्लाह आखिरत में आपको ओड़खान वाला बना दे। हम तो ये चाहते हैं। वो कैसे होगा? वो कैसे होगा? जैसे इस दुनिया में आदमी अपनी ओड़खान और वर्ग को किसी के लिए वापरता है तो उसकी हमदर्दी सामने वाले के दिल में आ जाती है। खानदान के लिए वापरता है तो खानदान वाले उसको वडील समझते हैं, यार हमारा वडील क्या भाई, हाँ बोलो सही गलत। वो आदमी समाज के लिए वापरता है तो समाज कहती है यार हमारा वडील क्या भाई, हमारा वडील छे, बोलो सही गलत। और अगर समाज से ऊपर उठकर शहर के लिए वापरता है तो सारी कम्युनिटी कहती है यार हमारा वडील छे, बोलो सही गलत। और अगर पूरे जिले के लिए वापरता है तो बाज वडीलों को पूरा जिला कहता है हमारा वडील छे, बोलो खरी बात। और उससे आगे बढ़कर कोई सूबे की सतह पर इस्तेमाल हो तो कहता है हमारा वडील छे। क्यों? कि हमने अपनी सलाहियत को इनके लिए इस्तेमाल किया तो उनके दिल में हमारी जगह बन गई, वो हमको बड़ा समझने लगे। तो जैसे दुनिया में कोई आदमी किसी के लिए काम करता है तो उसकी वग बन जाती है और उसकी ओड़खन उनके दिलों में, ऐसे हर आदमी से ये कहा जाता है कि आखिरत की ये वग वाला कैसे बनेगा? का दो काम करने से बनेगा। एक, उसकी अपनी सलाहियत, अपनी सलाहियत के जरिए से अल्लाह के मखलूक को राहत पहुंचाने वाले काम करें, अल्लाह की अपनी वग को खोटी न वापरे, अपनी वग का खरा इस्तेमाल करे जिसके जरिए से उसकी लोगों को राहत हो। मिसाल के तौर पर मोहल्ले के वडील है, अब किसी में झगड़ा हो गया, अब उन्होंने भौंझगड़ कर दी, आपके वहां क्या कहते हैं उसको? समाधान करवा दी, गुजराती में ना भौंझगड़ पण क्या भाई, तो वो उसको समाधान करवा दिया, तो बहुत बड़ी बात हो गई। कही इसने अपनी वग का सही इस्तेमाल किया है कि इस खानदान में इसकी ओड़खान थी, इस खानदान में ओड़खान थी, दो बातें इसको कह दी, दो बातें इसको कह दी, अब 10 साल जूना झगड़ा था वो क्लियर हो गया। क्या हो गया? अल्लाह कुरान में फरमाते हैं कि आपस में सुलह कराना बहुत बड़ी नेकी है, वस्सुलहु खैर। और अल्लाह ने कुरान में फरमाया वस्सुलहु बैन अखवैकुम, कि तुम्हारे भाइयों में जब कोई 19-20 पड़ जाए तो क्या करो? सुलह कराओ। तो सुलह तो बहुत सारी कम्युनिटी के लोग कराते हैं, ईमान वाले भी और गैर ईमान वाले भी, बोलो कराते नहीं कराते? अब ईमान वाला कैसे कराएगा? क्या ईमान वाला दीन की रहबरी में कराएगा? क्या दीन की रहबरी क्या है? क्या किसी में दो में वांधा पड़ गया और सुलह कराने की बात हुई, उसमें सामने सगा मेरा बाप है, सगा मेरा भाई है, और हक पर सामने वाला है, तो हम ऐसा नहीं करेंगे कि वाद करें, अब्बावाद, भाईवाद, कौमवाद, खानदानवाद से हम कोई वाद नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे? का सही वाद करेंगे। क्या वाद करेंगे? हुज़ूर अलैहिस्सलाम के पास एक आदमी आया एक केस लेकर, एक ईमान वाला था, एक यहूदी था, तो उसको ये आशा थी कि ईमान वाले को कि मेरे हक में ही फैसला होगा। हुज़ूर ने उसके हक में फैसला किया है क्योंकि वो हक पर था। अपनी वग का सही इस्तेमाल, वाद के बगैर, किसके बगैर बोलो? हम कोई बिरादरी नहीं है, हम कोई कौम नहीं है, हम कोई खानदान नहीं है। ये कौम और बिरादरी और खानदान तो अल्लाह ने ओड़खान करने के लिए बनाया। काय के लिए बनाया? किसी के पेशानी पर लिखा ये घाची है, किसी के वहां लिखा ये मेहमान है, किसी के वहां लिखा ये फला है, या कौन सी बिरादरी है मुझे पता नहीं, किसी के पेशानी पर लिखा है? अल्लाह बोलो लिखा है? और ऐसा लिखा है कि ये ऊंचा है, ये नीचा है, ये जन्नत में जाएगा, ये जन्नत में नहीं जाएगा, ऐसा कहीं लिखा है? ये ऊंच नीच और बिरादरियों में होता है, गैर ईमान वालों में। अल्लाह ने हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया किसी की कोई इज्जत नहीं, किसी काले की गोरे पर, गोरे की काले पर, अरबों की गैर अरब पर, गैर अरब की अरबों पर, किसी की कोई इज्जत नहीं। अल्लाह के वहां इज्जत है वो तकवे वाले की है। किसकी है बोलो? इन अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम। कि कोई इस पर ऊंचा नीचा ना करे कि ये ऐसा ये ऐसा। आजकल तो ऊंचा नीचा किससे हो गया पता है? पैसों से हो गया। कैसा हो गया? पैसों वाला हो गया तो खानदानी हो गया। कैसा हो गया? पैसों वाला हो गया तो, और पैसों बगैर का है तो बगैर खानदान का हो गया। माँ बहन की गाली देगा तो भी वो पैसों वाला है तो खानदानी हो गया। छोकरे को कहता है अब खानदानी मानसो क्या भाई, अलग तो माँ बहन की गाली दे तो कहते खानदानी थी गो, है ना? पाखाना उठाने वाले का बेटा है लेकिन पैसों वाला हो गया तो खानदानी थे गया, मोटा घरना थे गया। तो आजकल लोगों को तोलने का मापदंड पैसा हो गया। तोलने का मापदंड क्या हो गया? तोलने का मापदंड कुर्सी हो गई। पखाना उठाने वाला है लेकिन वो कुर्सी बड़ा हो गया तो साहिब मोटा साहिब सैल्यूट मारा इसको। और आले रसूल है, अरे रसूल हुजूर की औलाद है, बेचारा गरीब है तो हल्का हो गया। हालांकि सबसे बड़ा आले रसूल होता है। दुनिया में कोई हुजूर के खानदान से बड़ा हो सकता है? अरे कोई हो सकता है? दुनिया में कोई हुजूर से बड़ा खानदान का हो ही नहीं सकता। लेकिन वो बेचारा गरीब है, वो बेचारा हो गया, और ये पखाना उठाने वाला इसको सैल्यूट मारते हैं। क्या मारते हैं? तो दुनिया में लोगों के तोलने का मापदंड क्या हो गया? पैसा हो गया, कुर्सी हो गई। तो हम भी भोंजगढ़ करेंगे, दूसरे लोग भी समाधान करते हैं, तो हमारा क्या होगा? कि हम वादे नहीं करेंगे ये कम्युनिटी, ये कम्युनिटी, ये बिरादरी का कुछ नहीं। तो फिर हम तकवे के बुनियाद पर करेंगे। इन अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, क्या हम इंसाफ की बात करेंगे? हमको अल्लाह कुरान में फरमाते हैं कौलू कौलन सदीदा, इंसाफ की बात करना। इंसाफ की बात करोगे तो तुम्हारे आमाल की हिफाजत हो जाएगी। युसलह लकुम आमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम, गुनाहों की माफी हो जाएगी। ये निकाह की आयत में पढ़ा है। कब पढ़ा है? निकाह हो गया तुम्हारा? हो गया भाई, इसमें निकाह सबके हो गए? मौली साहब ने आयत पढ़ी थी, मौली साहब को पूछने गए थे, मौली साहब मेरे निकाह में आयत पढ़ी, क्या मतलब इसका? पूछने गए थे, हाँ पूछने गए थे, ये मौली साहब ने निकाह में पढ़ा था, क्या मतलब इसका? कि दो परिवारों का यहाँ आज मिलाप होगा, तो कभी न कभी वांधा पड़ सकता है, कभी न कभी वांधा पड़ सकता है। तो ये आयत वहां सुनाई, क्या करोगे वांधा पड़े तो? छोकरी को कहने जैसा हो छोकरी को कहना, छोकरे को कहना जैसा हो छोकरे को कहना, ऐसा पक्ष मत लेना भाई, जो भी हो गया अपन छोकरी हमारी है ने, भाई छोकरा हमारा है ने, ये पक्ष मत लेना। का क्या कहना? ककुलू कौलन सदीदा, इंसाफ की बात बोलना, पक्ष मत लेना। ये कब पढ़ा? ये आयत कब पढ़कर सुनाई? अरे बोलो तो खरे, ये सारी बातें जो सुनाई वो निकाह की आयतों में सुनाई। क्या पक्षवाद मत करो, इंसाफ की बात करो। किसके बात करो? तो आप लोग भी समाज में बड़े हो मिसाल, और आप ऐसा काम करते हो तो हमको ये बातें समझाई जाती है कि अपनी वग से, अपनी ओड़खान से और अपनी इन चीजों से अल्लाह के मखलूक की खिदमत करो। अल्लाह की जमीन पर अल्लाह को दो काम बहुत पसंद है। अल्लाह की जमीन पर अल्लाह को कितने काम दो पसंद है? अरे बोलो तो खरे, दो काम। एक, अल्लाह की धरती पर कोई आदमी अल्लाह का बंदा बनकर रहे वो बहुत पसंद है। क्या पसंद है? اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ہم تم سے یہ تقاضا کرتے ہیں کہ تم میرے بندے بن کر رہو. کونو عباد اللہ,
آنکھیں مت دکھاؤ
بلکہ اللہ کے سامنے چپ کر رہو.
کیسے؟ ہمارا چھوکرا بیٹا باپ کا باپ بنے تو اچھا نہیں لگتا, باپ بن گیا باپ کا باپ اچھا لگتا ہے. تو کیسا اچھا لگتا ہے؟ وہ بیٹا بیٹا بن کر رہے تو اچھا لگتا ہے, وہ باپ کا باپ بنے تو اچھا لگتا ہے. یہ دھرتی اللہ کی ہے, اب اس میں کوئی اکڑ مکڑ کرے, اس میں کوئی پیر ٹھوک کر چلے, اس میں کوئی ٹون بگاڑ کر بات کرے, کوئی اس میں گھمنڈ کرے, کیسے کو اچھا لگے گا؟ اللہ کو یہ پسند نہیں ہے. کیوں؟ کہ یہ تو گندے پانی سے پیدا ہوا ہے, گندے پانی منی کے قطرے سے, بدبودار قطرے سے, اور اس کے جسم میں گندگی گندگی ہے. ناک سے نکلے وہ گندا, منہ سے نکلے وہ گندا, کان سے نکلے وہ گندا, پیشاب پخانے سے نکلے وہ گندا. تو پیدا ہوا گندگی سے ہے بھی گندا, اور نبڑا اتنا ہے کہ ذرا ہوا کا جھونکا چلے کہ اس کی وکٹ گر جاوے. ہاں, ذرا کورونا آ گیا, وائرس دکھتے بھی نہیں تھے, وکٹ گری, دھڑا دھڑ دھڑا دھڑ دھڑا دھڑ, ہزاروں انسان چلے گئے, نظر بھی نہیں آ رہا تھا وائرس. کتنے وائرس کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا, بولو کر سکتا ہے؟ اور ڈر بہت کتنا ہے کہ کتنا ڈر گئے تھے پتا ہے؟ سگی ماں کے جنازے کو بھی لوگ نہیں اٹھاتے تھے, سگے بابا کے جنازے کو بھی نہیں اٹھا, غسل نہیں دیتے تھے. ابا مر گیا غسل نہیں دیتا تھا, کہ اتنا ڈرپوک ہے. جب اتنے ڈرپوک, اتنے کمزور, تو پھر یہ پیر ٹھوک کر چلے تو شوبتا ہے؟ اللہ بولو شوبتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں تو زمین پر پیر ٹھوک کر کیسے چلتا ہے؟ لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. تو یہ پیر ٹھوک کر چلتا ہے, کیا تو ایسا سمجھتا ہے زمین پھاڑ کھائے گا؟ یہ تو اتنا زور زور سے کہہ کو بولتا ہے, زور زور سے تو گدھا بولتا ہے. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر, یہ زور زور سے کہہ کو بولتا ہے. اللہ نے گلا چیخنے چلانے کے لیے, گلاٹا کرنے کے لیے دیا ہے, کہہ کو زور زور سے بولتا ہے, دداگیری کرتا ہے. یوں تو اللہ کو سب سے بڑی جو چیز پسند ہے وہ کون سی؟ کہ آدمی اللہ کے سامنے چھوٹا بن کر رہے. اللہ نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے بڑا بنایا. کیسا بنایا؟ اللہ کے بعد اس زمین پر اگر کسی کا وزن ہے تو وہ کس کا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا. ان سے بڑا دنیا میں کوئی نہیں. محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا, اتنے بڑے آدمی, لیکن اپنے ذات سے اتنے چھوٹے بن کر رہتے تھے کہ گھر میں اپنا گھر کا کام خود کرتے تھے. کیسا کرتے تھے؟ گھر میں جھاڑو دیتے تھے, گھر میں اپنے کپڑے کو سینا ہو تو خود سیتے تھے, اپنے جوتے خود سیتے تھے. کیسے کرتے؟ کھانا نیچے بیٹھ کر کھاتے تھے, نیچے بیٹھ کر. آج کل تو کھانے کی فیشن ہو گئی ہے, دوڑتے دوڑتے کھانا, بھگتے بھگتے کھانا, چلتے چلتے کھانا, ہوتے ہیں اسٹائل ہے. نہیں, یہ کلچر کہیں سے ہمارے پاس آیا. اب شادی میں بوفے چلتا ہے, کھڑے کھڑے, جیسے جانور کھڑے کھڑے کھاتے ہیں. ایسے ہم نقل کرتے ہیں لوگوں کی, لیکن عقل کے بغیر کرتے ہیں. کیسے کرتے ہیں؟ ہاں, عقل کے بغیر. ہم نے یورپ میں دیکھا سب جگہ, وہ کھڑے کھڑے بسوں میں کھاتے ہیں, ٹرینوں میں کھاتے ہیں, کھڑے کھڑے. یہ سارے ویسٹرن ملکوں میں, امریکہ میں, کینیڈا میں, سب جگہ ہم نے وہاں بھی دیکھا کہ وہاں ٹرین میں صبح صبح ہم لوگ بیٹھے نیو یارک میں, تو دیکھا وہ نوکری پر جانے والے ہاتھ میں بفے, اور یہ کہ کوئی کسی سے گاڑی میں بات بھی نہ کرے, ہنسے بھی نہیں, یوں ہنسے بھی نہیں, کوئی کسی کو کوئی خیریت نہ پوچھے. میں جا رہا تھا وہاں کسی ایک کام سے, تو میرے ساتھ ایک ڈرائیور تھا, ہم روز پورے ڈبے میں باتیں کرتے تھے, اور کوئی ماتھا جو نہ کرے, کسی کو کسی کی کچھ نہیں پڑی, سب نفسا نفسی میں. وہاں تو پیسوں پر ڈالر ہوتے ہیں. کس پر؟ ایک کلاک کے $16, 16 سے لے کر $22 ایک کلاک کے. تو روم پارٹنر ہے, پر تمہاری, تم بیمار ہو گئے, تمہاری سیوا کے لیے تھوڑی دیر رکوں, تو میرے آدھا گھنٹہ گیا تو میرے $8 کٹے, تو تم سلامت ہے, تمہارا جان سلامت, میں جاتا ہوں نوکری پر. یہ دنیا سوارتھی ہے. یہ دنیا کیسی ہے؟ سوارتھی. سوارتھ کے لیے سب کو چھوڑ دیتے. ہم لوگ وہاں تھے تو وہاں مدر ڈے تھا, مدر ڈے. میں نے کہا یہ مدر ڈے کیا ہوتا ہے؟ تو کہنے لگے کہ مدر مانی ماتا, ڈے کے مطلب ماتا کا دن. تو بھائی ماتا کا دن کیا ہوتا ہے؟ تو کہنے لگے کہ یہاں چھوکرے 16-18 سال کے ہوتے ہیں, تو وہ اپنے اپنے گھر الگ چلے جاتے ہیں, ماں باپ کو چھوڑ کر, ختم بات, تم الگ ہم الگ. اب پورے سال میں ماں کے پاس ملنے بھی نہیں آتے, تو اب وارشک ایک دن بنا دیا مدر ڈے, کہ کم سے کم ورس میں ایک مرتبہ ماں کو ملنے آؤ. تب وہ ورس میں ایک بار ماں کو ملنے آتے ہیں, اس ملنے کا نام بنا دیا مدر ڈے. اتنی سوارتھی دنیا. मैंने कहा फिर वो छोकरे माँ के साथ पूरा दिन 24 घंटे रहते हैं उस दिन? कहा ना, वो छोकरे के मूड पर है, छोकरे के कोई घंटा रह गए, कोई आधा घंटा और कोई 10 मिनट। माँ इतना सजा कर रखे, खाना वाना बनाकर मेरा छोकरा मिलने आने वाला है, लेकिन उसका मूड अब वो अपना जीवन जी रहा है जिसके साथ भी जी रहा है। ये दुनिया इतनी बेवफा दुनिया है और दुनिया इतनी स्वार्थी दुनिया है। ये दुनिया के जो लोग है ना, ये दुनिया के लोग अभी तो उन मुल्कों के आप देखो वीजा फॉर्म भरते हैं तो बाबा का नाम नहीं पूछते, माँ का नाम पूछते हैं, क्यों? बाबा खबर ही नहीं कौन है। ऐसी 90% औलाद जो है ये हराम की औलाद है, वहाँ शादी कोई नहीं करते। हम लोगों ने वहाँ पूछा, हम लोग वहाँ थे तो हमने पूछा कि क्यों शादियाँ तुम नहीं करते? कहा हमारे वहाँ कायदा ये कोई तलाक दे रहे। हम उनका बहुत फिरे, उनके वहाँ न्यूयॉर्क गए, डिट्रॉइट गए, ह्यूस्टन गए, कैलिफोर्निया गए, लॉस एंजलिस, सब जगह हमने देखा शादियां लोग नहीं करते। हमने कहा क्यों नहीं करते हो? कहा हमारे वहाँ कायदा ये है कि कोई आदमी 40 साल का हो जाए, कोई आदमी तलाक दे भी अपनी बीवी को, तो तलाक देने के बाद आधी प्रॉपर्टी सामने वाली ले जाती है। अब तलाक देने का किसको सत्ता? का जैसे छोकरे को, ऐसे छोकरी को, जैसे छोकरे को सवार हुई और उसका मूड खराब है, अच्छा नहीं है, तो क्या देगा? ऐसे तू छूटा, तो अपने तो छूटे हो गए और अखे जीवन की आधी प्रॉपर्टी गई, समझे बात आप? तो क्या शादी करते हुए बहुत डर लगता है, शादी करते हुए कि चलो उसके साथ शादी तो अपने कर ली, लेकिन शादी करने के बाद उसको मैं अच्छा ना लगूं, पता नहीं कौन सी रात में कौन सा दिन अच्छा ना लगूं, और वो सुबह उठकर क्या देगा? हाजी साहब आज से अपने छूटा, तो अपना तो आधा गया। तो इसमें तो ऐसी 90% लोग शादियां नहीं करते वहां, 90% लोग वहाँ जिना की औलाद है। कौन सी औलाद है? और ये स्वार्थी औलाद है, स्वार्थ वाले सब, तो अपनी माँ को भी भूल जाते हैं। तो आजकल वीजा फॉर्म में ये पूछते हैं कि तुम्हारे बाबा कौन, ये नहीं, तुम किसके बेटे हो, तो माँ का नाम लिखने का। तो जिनके हम इत्तेबा करते हैं ना, यूरोप, यूरोप ये, यूरोप ये, वहां तो इतना जोरदार सूरज जो तुलू हुआ है वो भी यूरोप जाता है ना, वहां डूब जाता है, हम भी डूब जाएंगे इतना जोरदार सूरज। तो ये इन बातों को आज पूरी दुनिया हम इन चीजों से मुतासिर है। ये हमदर्दी के नाम पर मुबारक तबलीग की जो मेहनत है उसमें सब तबकों को जोड़ा जाता है और ये बातों की तरफ तवज्जो दिलाई जाती है कि भाई हम मरने के लिए पैदा हुए हैं और रोजाना अपने मौत की तरफ जा रहे हैं, रोज अपने मौत की तरफ जा रहे हैं। ये पानी का बबूला कब फूट जाएगा पता नहीं, इस 15 शाबान तक भी मैं जिंदा रहूंगा कि नहीं रहूंगा हमें नहीं पता है, हमें नहीं पता है कि इस 15 शाबान तक भी हम जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे। तो हम क्या करें? कब उस कब्र में जाने की तैयारियों के साथ जिए। हर आदमी को ये होता है, नहीं मैं तो अभी बहुत तंदुरुस्त हूँ, मैं बहुत हट्टा कट्टा हूँ और अभी मैं तो इतना जी सकूँ ऐसा हूँ। हमारे नबी सलाम की बात का मफहूम है, मेरी उम्मत की उम्र 60 और 70 के बीच में होगी, 60 और 70 के बीच में कम लोग होंगे जो उसके ऊपर आगे बढ़ेंगे, वरना अक्सर लोग 60-70 के बीच में पूरे हो जाते हैं। आप देखना, सर्वे करके देख लेना, अक्सर लोग 60-70 के बीच में होते हैं, बहुत कम लोग आपको माशरे में मिलेंगे जो 70 के ऊपर होंगे। अपनी मस्जिद में, अपने मोहल्ले में, अपने फड़िये में सर्वे करना कि 70 वर्ष से ऊपर के लोग कितने हैं, कितने हैं, तो आपको उंगली पर गिने जाए इतने मिलेंगे, उंगली पर गिने जाए इतने मिलेंगे। वरना हमारे नबी ने फरमाया, और हमारे नबी ने जो फरमाया वो आखिरी बात, उसके बाद कोई बात नहीं हो सकती। सबसे बड़ी बात हमारे नबी की बात, सबसे बड़ी बात किसके बाद? उस नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कब्र में ऐसे हालात पेश आते हैं कि अगर लोगों को पता चल जाए कि क्या हालात पेश आते हैं तो लोग अपने मुर्दों को दफनाना छोड़ दें। ऐसे खतरनाक हालात होते हैं, ऐसे खतरनाक, और कोई हमारे कब्र के दुख का भागीदार नहीं बनेगा, एक आदमी भी हमारे, और लोग हमको भूल जाएंगे। अभी ये सब बैठे हैं, वो सब अपना देख लें कि दादा तो अक्सर को याद है, मेरे दादा ये थे, पर दादा का नाम कितनों को याद है, ये सब सोच लें। और हम अक्सर जो प्रॉपर्टी वापरते हैं वो अपनी नहीं वापरते, दादा की, परदादा की। भाई दादा के पास परदादा के पास से आई, परदादा के पास से बाबा के पास आई, और बाबा के पास से मेरे पास आई, उनके घरों में रहते हैं, उनका घर वापरते हैं, और उनका नाम भी भूल गए हम। तो जैसे हम अपने बड़ों का नाम निशान भूल गए, तो क्या हमारे बाद वाले हमको नहीं भूल जाएंगे? कब्र भी भूल जाते हैं, इसमें कितने होंगे कि जिसको अपने परदादा की कब्र भी याद नहीं, कब्र कहाँ है वो खबर नहीं, कितनों को तो दादा की कब्र का खबर नहीं होगी। हालांकि अक्सर लोग दादा की प्रॉपर्टी वापरते हैं, भाई मैं जिस घर में रहता हूँ मेरे अब्बा का नहीं, मेरे दादा का वारसा ही मेरे अब्बा के पास आया और अब्बा का मेरे पास आया, उस घरों को वापरते हैं और दादा की कब्र भी याद नहीं है, दादा का नाम भी याद नहीं, पर दादा का। ये दुनिया इतनी बेवफा दुनिया है। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं ये दुनिया में लोग धोखा खाएंगे, तुम धोखा मत खा जाना। ला यगुर्रन्नकुम बिल्लाहिल गुरूर, तुम्हें धोखा देने वाली दुनिया धोखा न दे दे। धोखा खाने का मतलब क्या कि अल्लाह ने अगर किसी को कोई सलाहियत दी है तो उस सलाहियत से अपनी आखिरत बनाकर नहीं गया, या अपनी सलाहियत से इस दुनिया में ऐसे काम नहीं किए जिससे आखिरत में काम आवे, जो आखिरत में काम आए। आखिरत बनती है इस बॉडी का सही इस्तेमाल करने से। आदमी के बॉडी के इस्तेमाल से या तो आखिरत बनेगी या तो आखिरत बिगड़ेगी। आखिरत जो बनती है या तो इसके बॉडी के सही इस्तेमाल से या इस बॉडी के गलत इस्तेमाल से। किताबों में आता है कि एक आदमी एक जुमला बोलता है, उस जुमले से दो टूटे हुए खानदानों में जोड़ हो गया। लोग कटे हुए दिल के थे, वो मोहब्बत से जुड़ गए दो बोल से, कि इसने अपने बोल का सही इस्तेमाल किया। और एक बोल बोलने वाला, वो एक दो बोल बोला है लेकिन दो जुड़े हुए खानदान तितर बितर हो गए। कि इसका एक ही बोल है लेकिन उसने खानदान को तोड़ दिया। तो किताबों में आता है कि बाज़े वो लोग के जो जबान से एक जुमला बोलते हैं लेकिन अल्लाह के वहां अपनी बड़ी जगह बना लेते हैं, और बाज़े वो लोग हैं जो जबान से अपना एक बोल बोलते हैं और अपनी जगह जहन्नम में बना लेते हैं। तो ये मापदंड सीखने की चीज है। ये तबलीग की मेहनत क्या, कब बोलना, कितना बोलना, कब बोलना, कैसे बोलना, ये सब चीजें सीखने का नाम दीन है। हर आदमी हर वक्त हर बात नहीं बोल सकता। दुनिया में आदमी बात ऐसा करता है कि मैं तो चौखी चौखी बात करता हूँ, क्या करता हूँ, मैं तो साफ साफ बात करता हूँ। अल्लाह ने तुझे कहा है साफ साफ बात ऐसी बोल कि जिससे लोगों के दिल टूट जावे, लोगों के दिल फट जावे, आपस में लोगों के कहा मैं तो साफ साफ बात, लोग कहते हैं महाराज खोटो बैठा तू नहीं। अल्लाह भाई बैठवानी वस्तु छोटी छे, बैठवानी वस्तु कही खोटी कहने बैठी लो, ताकि बाकी सही वस्तु कोई ना बैठे तो ये तो इन कमीनापन के भाई। सही बात को तो कबूल किया जाता है, सही बात को क्या किया जाता है, और बर्दाश्त करने के बाद गलत होती है। भाई वो गलत बोल गया, बर्दाश्त कर लो, वो गलत व्यवहार कर गया, बर्दाश्त कर लो। क्या बर्दाश्त करने की जो चीज होती है वो कौन सी होती है, अरे बोलो, खोटी होती है। वो आदमी बहुत तुम्हारे से कहता है मेरे से खोटा बर्दाश्त नहीं होता, तो क्या करेगा, झगड़ा करेगा, अपने बाप के साथ झगड़ा करेगा, माँ के साथ करेगा, सगे भाई बहनों के साथ करेगा, मोहल्ले वालों के साथ करेगा। हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने कितनी नागवारी बर्दाश्त की। किताबों में आता है कभी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी जात का कभी बदला नहीं लिया, अपनी जात मुबारक का कभी पूरे जीवन में बदला नहीं लिया। कमर पर ओझड़ी रख दी, ओझड़ी सजदे में है, हमारे नबी ने अपनी जात का बदला नहीं लिया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम हरम में नमाज पढ़ रहे थे, एक दुश्मन आया और गले में यूं रस्सी डालकर यूं खींचा और हुजूर अलैहिस्सलाम की जबान मुबारक बाहर आ गई। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने बदला नहीं लिया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की बेटियों को तलाक दी, बदला नहीं लिया। तलाक दी, हुजूर अलैहिस्सलाम को जहर दिया गया, बदला नहीं लिया। मारने का प्लान बनाया, किताबों में आता है हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी जात का कभी बदला नहीं लिया। क्या बर्दाश्त कर जाना, ये खूबी की बात है, सह जाना, बर्दाश्त कर जाना। जब आदमी को थोड़ी वग होती है ना वो बर्दाश्त कम करते हैं, क्योंकि अपना पास शक्ति छे ना बताई रही है। अपना हमारे नबी अलैहिस्सलाम के पास को अल्लाह, हमारे नबी अलैहिस्सलाम को तो अल्लाह ने इतनी ताकत वाला बनाया था कि हमारे नबी अलैहिस्सलाम को जब ताइफ के लोगों ने परेशान किया तो अल्लाह ने अपने फरिश्तों को भेजा और कहा कि तुम कहो तो इन बस्ती वालों को दो पहाड़ों के बीच में कुचल कर एक कर दूं। तो हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने कहा नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहता हूं। हालांकि ताइफ वालों ने सबसे ज्यादा हमारे नबी अलैहिस्सलाम को तकलीफ दी, सबसे ज्यादा दुखी किया, सबसे ज्यादा तकलीफ पहुंचाई, लेकिन हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने उनका बर्दाश्त कर लिया। ओहद वालों को अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम चाहते तो बद्दुआ करते कि ओहद में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के दांत गिर गए थे, सर में मार पड़ी थी दुश्मन ने मारो, तो हमारे नबी अलैहिस्सलाम से लोगों ने कहा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम आप ओहद वालों के लिए बद्दुआ कर रहे। तो हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने हाथ उठाए और फरमाया कि अल्लाह तो इस कौम को हिदायत दे, इन्होंने तेरे नबी के साथ ये सब कुछ इसलिए किया कि वो जानते नहीं है, कि तेरे नबी को जानते नहीं है इसलिए किया, ये दुआ कर रहे हैं। अक्सर आदमी के पास शक्ति आती है ना तो शक्ति में वो बहुत सारी चीजें भूल जाता है। कोई खानदान का शक्तिशाली होता है, कोई वडील होता है, कोई पैसों का, कोई अपनी कुर्सी का, कोई किसी का, तो कभी भी ऐसा ना हो जाए कि अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल हो जाए। सबसे बड़ी शक्ति अल्लाह की है, सबसे शक्तियों वाला सबसे बड़ा अल्लाह है। برداشت کرنا اللہ کو پسند ہے. تو اس زمین پر آپ حضرات کو جو ابھی ہم نے بلایا نا کہ بھئی یہ کون لوگوں کو بلایا, ابھی ورگ والے لوگوں کو بلایا, چودھریوں کو بلایا, کہ دنیا میں لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ اپنی اپنی اوڑکھان, اپنی ورگ, اپنی شکتی کا یا تو اچھا استعمال کرتے ہیں یا غلط استعمال کرتے ہیں. اگر اندر اچھے جذبے ہوتے ہیں تو اپنی شکتی اور اپنی ورگ کا اچھا استعمال کرتے ہیں. اللہ نے قرآن میں یہ بات فرمائی کہ تم اللہ کے بندے بن کر رہو. ان ساری چیزوں میں اللہ نے ساری نعمتیں دی, لیکن اللہ کے سامنے ہم چھوٹے بن کر رہے ہیں. اور اللہ نے جو چیز ہم کو دی ہو اس سے آخرت بنانے والے کاموں میں اس کا استعمال کر رہے ہیں. اگر نہیں کیا تو بھی ان چیزوں کو چھوڑ دینا ہے, اور کیا تو بھی ان چیزوں کو. ایک آدمی کرسی والا ہے, اس کرسی کو اچھے استعمال کرنی تو بھی ایک دن کرسی سے ریٹائرڈ ہوگا, اور غلط استعمال کی تو بھی وہ استعمال کر کے ریٹائرڈ ہوگا. اور بعض آج پیسوں والا ہے, ہو سکتا ہے کل پیسوں والا نہ ہو. بعض آج تندرستی والا ہے, ہو سکتا ہے کل تندرستی والا نہ ہو. تو اپنی ان چیزوں کا صحیح استعمال کرے. یہ قارون جو ہے نا, قارون بہت بڑے خزانے والا تھا, وہ موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا. تو اللہ نے اس کو کیا کہا پتا ہے, یہ ہم نے جو چیزیں دی اس سے تو اپنی آخرت کو بنانا مت بھول. یہ فرمایا کہ اس سے تو اپنی آخرت بنانا نہ بھول. تو سب سے پہلا ہم سے تقاضا یہ ہے کہ اللہ پاک نے آپ حضرات کو وقت دی ہے, صلاحیتیں دی ہے, کہ اس کے ذریعے سے اللہ کی مخلوق کے کام آنا. کیا کام آنا بولو؟ اللہ سب سے, اللہ کو اپنی زمین پر دو کام بہت پسند ہے. اللہ کی زمین پر اللہ کو دو کام بہت پسند ہے. ایک اللہ کا بندہ بن کر رہنا, کوئی تماخی نہ کرے, کوئی تیور نہ خراب کرے. اس لیے کہ جس کے پاس جو نعمت ہے وہ کس کی دی ہوئی ہے. جس طرح اللہ دینا جانتا ہے اللہ لینا بھی جانتا ہے. اس ملک پر پہلے ایمان والوں کی 800 سال تک حکومت تھی, جب تک اللہ نے رکھی رکھی, پھر اللہ نے لے لی, ان کا بچہ بچہ ختم ہو گیا. کہ اللہ مالدار بنانا بھی جانتا ہے اور اللہ غریب کرنا بھی جانتا ہے. اسی مجلس میں بہت سارے ہوں گے کہ جن کے بابا غریب تھے, بیٹے کو اللہ نے مالدار کر دیا. اور بعض اس مجلس میں ایسے ہوں گے کہ بابا بہت مالدار تھا, یہ چھوکرا ماشاءاللہ ایسا رہا کہ اس کو بڑھا نہیں سکا, اس میں کمی کر دی, بابا کی جمع کی ہوئی زمینیں بیچنے لگا. یہ اللہ کا نظام ہے, اللہ جس کو چاہے بڑھائے, اللہ جس کو چاہے لے لے. یہ دنیا میں ایسے لوگ آپ کو ملیں گے کہ بابا غریب تھے بیٹوں کو مالدار کر دیا, بابا مالدار تھے بیٹوں کو غریب کر دیا. یہ اللہ کا نظام ہے, چڑھتی بھی لاتے ہیں اور پڑھتی بھی لاتے ہیں. یہ چیزوں پر کوئی آدمی دھوکہ کھا کر تیور خراب نہ کرے, بلکہ اپنے رب کے سامنے جھکا ہوا رہے. میں نے بتایا ہمارے نبی علیہ السلام اتنے بڑے آدمی, ان سے بڑا کوئی نہیں, زمین پر بیٹھ کر کھاتے تھے. ایک آدمی نے آ کر کہا اللہ کے نبی علیہ السلام, اللہ نے آپ کو اتنا بڑا بنایا اور آپ زمین پر بیٹھ کر کھاتے ہو. تو کیا فرمایا, میں تو اللہ کا بندہ ہوں, میں اللہ کا بندہ ہوں, میں پسند کرتا ہوں کہ میں زمین پر اللہ کا بندہ بن کر رہا ہوں. جب قافلہ چلتا تھا, قافلہ, تو ہمارے نبی سب سے پیچھے ہوتے تھے, کوئی اوڑکھ نہیں سکتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آدمی ہے. ہاں, اوڑکھن کرانی پڑتی تھی. جب ہجرت کر کے مکے سے مدینہ منورہ گئے اللہ, تو سب لوگوں نے کس سے مصافہ کیا, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, یہ سمجھ رہے کہ یہ نبی ہے. جب وہ تو بادل آیا, دھوپ آئی, تو بادل آیا ہمارے نبی پر سایہ کرنے کے لیے. کیا کرنے کے لیے؟ ہمارے نبی پر ہمیشہ بادل سایہ کرتا تھا. تو سایہ کرنے کے لیے بادل آیا, تب لوگوں کو خبر پڑی کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں, کون ہے, یہ ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اڑکھن ایسی نہیں کرائی, میں ایسا, کہ اپنے آپ کو ایسا چھوٹا بنا کر رکھتے تھے. ہے سب سے بڑے, ان سے بڑا دنیا میں کوئی نہیں. کہ اللہ کے بعد جو سب سے بڑا درجہ ہے وہ ہمارے نبی کا ہے, لیکن زمین پر ایسے چھوٹے بن کر رہتے تھے. یہ کیوں کہنا پڑتا ہے کہ زمین پر دنیا میں ایسے لوگ بھی آئے ہیں جنہوں نے اللہ کا مقابلہ کرنے کی باتیں کی. یہ فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا, اس کو اللہ نے نعمتیں دی تو اس کو نشہ چڑھ گیا. کیا چڑھ گیا؟ نشہ. لوگوں کو نشہ چڑھتا ہے, کرسی کا نشہ, پیسوں کا نشہ اور عورت کا نشہ. تو وہ آدمی بہکی بہکی باتیں کرتا ہے, چڑھی چڑھی باتیں کرتا ہے. یہ فرعون خبیث کو اتنا نشہ چڑھا کہ اس نے تو خدائی کا دعویٰ کر دیا. شیطان نے نہیں کیا خدائی کا دعویٰ, لیکن فرعون نے تو خدائی کا دعویٰ کر دیا. تو پہلی بات یہ سمجھائی جاتی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ نے ہم سب کو جو نعمتیں دی ہیں اس میں ہم سے کبھی ایسی بات ہو جائے جو اللہ کو ناپسند آ جائے. اس لیے ہر ایک سے بات کہی جاتی ہے کہ اللہ کو اللہ کی دھرتی پر پہلا عمل جو پسند ہے وہ یہ ہے کہ آدمی اللہ کا بندہ بن کر رہے, ہر چیز میں سے توازو ٹپکے, چھوٹا پنا ٹپکے, چھوٹا پنا. جیسے ہمارے نبی علیہ السلام, کہ اللہ نے ان کو سب سے بڑا بنایا, لیکن آنے والا پوچھتا تھا تم میں کون ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی علیہ السلام سب سے لاڑ پیار کرتے تھے, سب سے محبت کرتے تھے, بچوں سے بھی سلام کرتے تھے. جب تماخی آ جاتی ہے تو لوگ یہ سوچتے ہیں مجھے وہ سلام کرے, میں کیوں سلام کروں. ہمارے نبی علیہ السلام راستے سے جاتے, بچے کھیلتے تو اس کو بھی سلام کرتے تھے. کہ یہ اتنے بڑے ہو کر اتنے چھوٹے بن کر رہنا, अल्लाह को सबसे बड़ी अब्दियत वाली जिंदगी। और अब्दियत की निशानी है कि आदमी सारे कामकाज में अपने अल्लाह को ना भूले। अल्लाह को ना भूलने का मतलब, मसलन नमाज का टाइम आया तो कितना भी बड़ा काम आ गया, सबसे बड़ा मेरा अल्लाह है। ये जगह पर जहां मुझे पहुंचाया मेरे अल्लाह ने पहुंचाया, मैं अल्लाह को नहीं भूल सकता हूं। इसलिए सबसे बड़ा अमल अल्लाह ने मुझे दिया वो नमाज का। नमाज किसी हाल में माफ नहीं, किसी हाल में नमाज माफ नहीं। अगर नमाज माफ होती तो सहाबा के हालात ऐसे ऐसे पेश आए कि नमाज पढ़ना मुश्किल थी। हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला मैदान कारजार में और दुश्मनों से कहलवाने भेजा कि मुझे मौका दो, मुझे नमाज पढ़नी है। तो दुश्मन कहने लगा हम तुम्हें नमाज पढ़ने का मौका नहीं देंगे। तो हजरत हुसैन कहने लगे कि भाई इस हाल में भी नमाज माफ नहीं है, हम नमाज इस हाल में भी पढ़ेंगे। उसी नमाज की हालत में उनके लश्कर को छलनी कर दिया दुश्मनों ने। 72 करबला में शहीद हुए थे 72 आदमी, उसमें 16 आदमी हुजूर के घर के थे, अहले बैत में से 16 थे 16। अगर नमाज माफ होती तो वो लोग आज के दिन छोड़ देते कि भाई अभी खतरे की घटी है, नमाज छोड़ देनी है। वो समझते थे किस संयोग में भी नमाज माफ नहीं है। उमर रजी अल्लाह तआला को चालू नमाज में किसी ने खंजर मारा, खून बह रहा था, खून बह रहा, बेहोश हो गए। उस बेहोशी की हालत में नमाज का टाइम आया। नमाज के टाइम में किसी ने जाकर कहा कि उमर नमाज का वक्त हो गया। एकदम आंखें खोली और फरमाया हाँ हाँ, जो नमाज न पढ़े उसका इस्लाम में कोई हिस्सा नहीं। एकदम खड़े हो गए, बेहोश है कुछ नहीं, लेकिन नमाज इसकी अजमत दिल में बैठी हुई थी। हम जिस संजोग में भी हो हमारा नमाज न जाए, इसलिए किताबों में आया कि उस आदमी का अमल जो नमाज छोड़ दे, उस आदमी के नमाज छोड़ने का अमल ऐसा है जैसे काफिर का अमल है। उसको भी अल्लाह ने अपने सामने झुकने को कहा, वो भी नहीं झुका और ये ईमान वाला भी नहीं झुकता। नमाज हम पर हर हाल में फर्ज है, किसी हाल में नमाज माफ नहीं, हमारी नमाज किसी हाल में न जाए। अक्सर हम लोग मशगूल होते हैं, देखो अल्लाह को हमारी नमाजों की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम नमाज पढ़ेंगे तो अल्लाह के सरकार को इतने वोट मिल जाएंगे। अल्लाह को हमारी नमाजों की कोई जरूरत नहीं। अल्लाह ने नमाज इम्तिहान के लिए दी है। अल्लाह ने नमाज, अल्लाह देखते हैं कि इस मशगूलियतों में हमारे सामने सारी मशगूलियतों को छोड़कर झुकता है कि नहीं झुकता। तो हम अल्लाह के सामने झुकने वाले बने। अल्लाह के साथ शिर्क ना करें। कोई आदमी अल्लाह के साथ शिर्क नहीं करेगा। अल्लाह अल्लाह है। अल्लाह कौन है बोलो? अल्लाह अल्लाह है। अल्लाह अपने साथ भागीदार को पसंद नहीं करते। हम नहीं करते ना। अरे भाई हमारी बीबी हमसे कहे कि मेरा आपके साथ निकाह हुआ है, तुम मुझे बहुत पसंद हो। कितने पसंद हो? 99.99% तुम भले हो। कितने बोलो? कितने टका? 99.99% तुमसे मेरा दिल लगा हुआ है। कितने टके 100% में रह गया जी? 99.99% उसने दिल हमको दे दिया। 1% का 100वां भाग। एक वो कहे कि उसको भी मैं दिल दे रही हूँ, वो भी मुझे अच्छा लगता है। 1% का 100वां भाग, वो भी मुझे अच्छा लगता है, मैं उसको भी दिल दे रही हूँ। हम क्या कहेंगे? कोई वांधा नहीं। चल तूने 99.99% मेरे को दे दिया, 1% उसको दे दे, बराबर। अरे बोलो हम ऐसा ही कहेंगे ना? तो क्या करेंगे हम? इसको सुनने को भी बर्दाश्त नहीं करते। क्यों नहीं करते भाई? 100% मैं तुझे दे रहा हूँ तो 100% हम भागीदार अपने जिससे हमने शादी की उसके साथ भागीदारी को पसंद नहीं करते। हम उससे वफा की आशा करते हैं। हम 500 रुपए का नौकर लाते हैं सुबह से शाम तक मजदूरी पर। हम ये आशा करते हैं आज के 500 रुपए मैं उसको दूंगा, सुबह से शाम तक मैं जैसे कहूँ ऐसे उठे, मैं जैसे कहूँ ऐसे बैठे। और कोई हमारी मर्जी के खिलाफ करे हम उसको डांटते हैं। अरे भाई तूने उसको क्या खरीद लिया है? क्या उसकी बॉडी तूने बनाई है? हमने उसकी बॉडी नहीं बनाई, हमने उसको खरीदा नहीं, पर हम उससे आशा ये करते हैं हम जैसा कहें ऐसा वो करे। तो जिस अल्लाह ने सब कुछ दिया, यहाँ से लेकर सब कुछ उसी ने दिया। देखो ना, हट्टे कट्टे अभी बैठे हैं, अभी हार्ट अटैक हो जाए हम कुछ कर सकते हैं? अभी दिसंबर फालज गिर जाए हम कुछ कर सकते हैं? अभी ब्रेन हेमरेज हो जाए हम कुछ कर सकते हैं? अभी हमारा सांस रोक ले हम कुछ कर सकते हैं? कि इसने इतनी करोड़ों रुपए नहीं अरबों खरबों की बॉडी दी है, क्या उस बॉडी पर उसका कोई हक नहीं है? तो उस बॉडी पर उसका हक यह है उसके साथ शरीक न करें, उस अल्लाह को अल्लाह माने, उसकी माने और नमाज न छोड़े। और तीसरा, अपने जीवन को अच्छा बनाएं। जहलत वाला, गफलत वाला नहीं, देखा देखी का जीवन नहीं। हमारे शरीयत में, सुन्नत शरीयत में इल्म हमारे नबी लेकर आए। भाई शादी कैसे करोगे? व्यापार कैसे करोगे? रेहड़ी करनी कैसे करोगे? वाणी कैसे करोगे? हम तो उधर की हवा हो जिधर की। ऐसा नहीं, जैसा देश वैसा भेस, ऐसा नहीं। अगर ऐसा जीवन जिया गया ये अल्लाह को नापसंदीदा जीवन है। और एक बात याद कि जो अच्छा करेगा वो उसके जीवन में उसका बदला पाएगा। और खुदा ना करे अगर कोई चुके करता है तो चुके मिटाई नहीं जाती, वो चुके महफूज होती है, वो भूले महफूज होती है। और कुरान में अल्लाह फरमाते हैं हर गलत करने वाले को हम उसका बदला देंगे, हर गलत करने वाले को उसका बदला चुकाएंगे। इसीलिए अल्लाह कुरान में फरमाते हैं जिसके भी संजोग खराब हो जाए, इनफरादी या इज्तिमाई, जिसके भी संजोग खराब हो जाए, वो किसी पर आक्षेप ना करे कि उसने ऐसे संजोग मेरे कर दिए, इसने ऐसे कर दिए, तो फिर किसको आक्षेप करे, खुद को करे। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं उसके ये जो संजोग खराब हुए हैं वो उसके हाथों की कमाई की वजह से, उसके हाथों के करतूत ऐसे हुए हैं जिसकी वजह से हमने इसके संजोग ऐसे किए हैं। मा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम, कि ये हरकतें ऐसी करता था जिसकी वजह से उसको ऐसा हमने किया है। अल्लाह जालिम नहीं है, अल्लाह किसी के हक में जालिम नहीं है, अल्लाह तो रहमान और रहीम है। फिर ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, मेरा सगा भाई मेरा दुश्मन हो गया, मेरा सगा बेटा मुझे तेवर दिखाने लगा, मेरे हालात खराब हो गए। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं ये तुम्हारे गलत करतूतों की सजा है, तुम्हें गलत करतूतों की सजा। ईमान वाले और गैर ईमान वाले में बहुत बड़ा फर्क है। गैर ईमान वाले के लिए अल्लाह ने इस दुनिया को जन्नत बनाया, वो जो चाहे करे, लेकिन ईमान वाले के लिए इस दुनिया में जन्नत नहीं है, हमारी जन्नत मरने के बाद है। इस दुनिया में हम सबको अल्लाह ने परखने के लिए पैदा किया है, इसलिए हम जान जान कर समझ समझ कर जीवन गुजारे, अच्छे दोस्तों को दोस्त बनाए, गलत दोस्तों को नहीं। अच्छे दोस्तों को दोस्त बनाएंगे ना तो अच्छा जीवन हमको मिलेगा, अच्छा जीवन। हमने किताबों में यूं पढ़ा कि आदमी अपने दोस्त के जीवन पर होता है, बल्कि आगे यूं फरमाया कि आदमी अपने दोस्त के धर्म पर होता है, आदमी अपने दोस्त के धर्म। आज दुनिया में लोगों को बेदीनों को दोस्त बनाते हैं ना तो धीमे धीमे उनके धर्म में भी चले जाते हैं। उनके धर्म में क्यों चला गया, कैसे उसको दोस्त उसने बना लिया। अभी हम लोग एक पंजाब में एक जगह गए थे तो एक लड़का एक साहब थे जिसके वहां ठहरे थे, वो कहने लगे कि मेरी बेटी है वो कहती है मैं मुसलमान से शादी नहीं करूंगी, मैं सिख से करूंगी। क्यों क्या हुआ, तो उसकी दोस्ती उससे थी, तो वो कह रही उससे करूंगी। कल हमको एक मौलाना से हम बैठे थे तो उन्होंने कहा कि मैंने अभी फलां को बुलाया कि उनकी बेटी एक गैर के साथ चली गई, क्यों कि उसके साथ दोस्ती उसकी हो गई। तो किताबों में आता है आदमी अपने दोस्त के धर्म पर चला जाता है। तो दोस्त किसको बनाओ, का दोस्त अच्छे लोगों को बनाओ, अच्छे लोगों की दोस्ती, कि ताकि हमारा जीवन सजग रहे। जब आदमी वग वाला हो जाता है, जरा मोहभाशाड़ी हो जाता है, जरा वजनदार हो जाता है, तो बाज मरतबा उसके दोस्त सर्कल खराब हो जाते हैं। लोगों को राजी करने के लिए वो लोगों से ऐसी ऐसी, देखो जरूरत के लिए तो आदमी को टॉयलेट में भी जाना पड़ता है, वहां कोई जाने के लिए राजी नहीं होता, पर जरूरत पड़ती है इसलिए जाते हैं। तो जरूरत के लिए कहीं किसी के पास आना जाना पड़ा तो वहां जाएंगे, दोस्ती नहीं करेंगे। अगर दोस्ती की तो धीमी गति में हमारी विचारधारा बदल जाएगी, हमारी बोल बदल जाएंगे, हमारी रहनी करनी बदल जाएगी, हमारी शादियां बदल जाएगी, हमारी गमियां बदल जाएगी, कि हमारा जीवन पूरा बदल जाएगा। और तुम जो गांव के वडील होंगे वो जैसा करेंगे उनके छोटे भी ऐसा ही करेंगे। कोई समाज के वडील होते हैं, कोई कौम के वडील होते हैं, कोई मोहल्ले के वडील होते हैं, लोग उनकी इत्तेबा करते हैं कि हमारे वडील है वो जैसा करेंगे ऐसा हम करेंगे। तो आप लोगों की लोग नकल करते हैं, तो आप लोगों को आपको बहुत सांचवना पड़ेगा, क्योंकि लोग आपके पीछे पीछे चलते हैं। अगर तुम्हारी गलत रविश हो गई तो तुम्हारे पीछे बहुत सारे लोग हैं, वो भी तुम्हारी इत्तेबा करेंगे, वो गलत जाएंगे। इसलिए आप लोगों को बहुत सजग जीवन जीना पड़ेगा कि आपके साथ समाज जुड़ा हुआ है, सोसाइटी जुड़ी हुई है, आप जैसा करोगे आपके बाद वाले ऐसा ही करेंगे। अगर आप अच्छे जीवन पर आ गए तो आपके बाद वाले आएंगे और उनके बाद आपके बाद वालों का जीवन आपके खाते में आएगा। किताबों में आता है जो आदमी किसी अच्छाई के चलने का जरिया बना, उसके जरिए से अच्छाई चली, तो उसके पीछे उसके जितने लोग उस अच्छाई को करेंगे वो उस आदमी के नामायामाल में जाएगी जिसने उस अच्छाई की शुरुआत की। फिर दूसरी जगह यूं लिखा किसी आदमी ने गलतियां की, अब उसको देखकर किसी ने गलत प्रथा गलत रिवाज शुरू किए, अब वो आदमी तो मर गया जिसने गलत बात चलाई थी, वो मर गया। अब उसके बाद उसके समाज और सोसाइटी में गलत बात चली, गलत बात, तो सबका गुना उस आदमी के खाते में जाएगा जो इसको शुरू करने का जरिया बना था। इसलिए आप हजरात को इसका बहुत ख्याल करना पड़ेगा। अल्लाह ने आपको वडील बनाया है, आपका जीवन बहुत वजनदार है, बहुत बड़ा भारी है, अगर थोड़ा सा संभाल लोगे तो आप अच्छी चीजों के चलने का जरिया बन जाओगे। आपका समाज में वजन बहुत ज्यादा है, वो कहते हैं ना 100 सुनार की और एक आपका थोड़ा लोहार जैसा है, कि समाज में कोई चीज चल रही है तो दूसरे लोग 50 आदमी समझाने जाते हैं, उनकी बात नहीं सुनेंगे, लेकिन आपकी बात का ऐसा वजन है कि आप एक मरतबा एक बात कह दोगे, वो चीज जो गलत चल रही थी वो रुक जाएगी, क्योंकि तुम्हारा थोड़ा लोहार जैसा है। अगर अच्छा चला तो हजारों अच्छाइयां जिंदा हो जाएगी, और खुदा ना करे अगर वही वडील से गलत बात चल गई, अब उसकी प्रथा में जितने लोग पीछे उस गलत बात को चलाएंगे वो अपनी उसके खाते में जाएगा जो इसकी शुरुआत करने वाला है। इसलिए तुम्हारे बोल की बहुत कीमत है। सबके सिग्नेचर में फर्क होता है ना, एक पटावाड़े की सिग्नेचर और एक प्रिंसिपल की सिग्नेचर, दो में कोई फर्क नहीं। अरे बोलो तो खरे, एक प्रिंसिपल साहब की सिग्नेचर और एक वजीर आजम की सिग्नेचर, दो में कोई फर्क नहीं। एक मोहल्ले की आम पब्लिक है और एक तुम्हारे जैसे एक वडील लोग हैं, क्या तुम्हारी सब चीजों में और मोहल्ले की आम पब्लिक में बहुत बड़ा फर्क है। तुम्हारी सब चीजें लोगों के लिए उदाहरण है। क्या है बोलो? उदाहरण, सिंपल। अगर तुम अच्छी चीजों के चलने का जरिया बने तो जितने तुम्हारे पीछे के लोग हैं अगर वो अच्छी चीजों के चलने का जरिया बने तुम्हारे खाते में आएगा। और खुदा ना करे तुमने इस पर तवज्जो नहीं दी और जैसा चलता रहा ऐसा चलाते रहे, उसको सही करने की फिक्र नहीं की, या हम खुद गलत चलने का जरिया बन गए, तो हमारे पीछे जितने लोग इसको गलत करेंगे तो उसका उसकी सजा हमें भुगतनी पड़ेगी। इसलिए आप हजरात को बहुत सजग जीवन जीना पड़ेगा। आप जनरल पब्लिक की तरह जीवन नहीं जी सकते हैं, आपको सारी बातें चौकसाई से जीनी पड़ेगी। हम लोग एक मरतबा एक जगह पर थे तो वहाँ बाहर मुल्क की एक जमात आई थी, तो हमारे एक मौलाना साहब थे तो उन्होंने एक खबरे पर रुमाल डाला था। यूँ डालते हैं बहुत सारे लोग, नहीं डालते रुमाल। तो वो नवाब मुसलमान आदमी था, न्यू मुस्लिम, तो उसने वो दूसरे देश का काला अफ्रीकी था, उसने यहाँ जैसे इन्होंने रुमाल डाला ना, ऐसे रुमाल डाला था, कोई बात नहीं डाले रखो कोई वादा नहीं है, तो वो डाला था, तो वो एकदम न्यू मुस्लिम था, तो क्या समझा ये भी धर्म का एक हिस्सा होगा, ये भी दीन का ही किस्सा होगा। तो क्या कहने लगा, मौलाना साहब यहाँ रुमाल डालना भी सुन्नत है। वो मौलाना ने एकदम बैठा लिया और कहने लगे, यार हम तो जो करते हैं उसको ये समझते हैं कि ये सुन्नत है, हम जो करते हैं वो क्या समझते हैं। ऐसे तुम वडील लोग हो, तुम जो अपने कौम समाज में करोगे लोग उसको क्या समझेंगे, ये हमारी हमारे करने की चीजें हैं। इसलिए आपको जान जान कर समझ समझ कर अच्छी चीजों के करने का रिवाज डालना पड़ेगा। उसके लिए दो चीजें हैं। खुद अपने मन को ऐसा बनाना पड़ेगा कि जिसके जरिए से हमको ये चीजें मिले, उसके लिए दीनी माहौल में जाना पड़ेगा। ये जमात में जाने की जो बात कहते हैं ना, हमको ऐसा लगता है ये तश्किल करते हैं। क्या कहते हैं, हमको क्या लगता है तश्किल कर, हम तश्किल नहीं करते। अला भाई डॉक्टर साहब जो होते हैं वो भी इसको सीखने जाते हैं, उसकी उसका मन बनाते हैं। अगर मन ना बने ना तो डॉक्टर बनकर भी वो डॉक्टर ही नहीं करता। अभी एक छोकरा मुझे मिला, मैंने कहा क्या पढ़ा तुमने, कहा मैं MBBS हूँ। क्या करते हो, कहा कौड़ी चलाता हूँ। मैंने कहा कौड़ी चलानी थी तो MBBS करने के लिए काय को जखमारी करने गया था, तेरे बाबा के इतने पैसे काय को बगाड़े। अब उसका मन नहीं था लेकिन घर वालों ने पढ़ाया, वो कौड़ी चलाता है। क्या चलाता है, अभी एक 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 एक, 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 एक दूसरा आदमी मिला मुझे दूसरी जगह पर, तो मैंने पूछा क्या करते हो, कहा मैं भी MBBS हो गया, साबरकांठा में मिला, मैं भी कौड़ी चलाता हूँ, और वो मिला वो गुजरे में मिला MBBS। उसका मन नहीं बना। क्या नहीं बना, बहुत सारे पढ़े लिखे होंगे लेकिन मन नहीं बना। तो मन बनाने की चीज है। बहुत सारे डिग्री वाले होते हैं लेकिन मन नहीं तैयार। ऐसे इन चीजों के लिए मन बनाना पड़ता है। मन अल्लाह के रास्ते की अल्लाह ने अजीब और गरीब ताकत रखी है, तासीर, कि थोड़ी देर के लिए माहौल में आदमी जाता है ना तो मन बन जाता है। देखो आम दिनों में किसी को रोजा रखने को कहो तो रोजा रखने का जल्दी मन नहीं होता, पर उसी आदमी को माहौल मिल जाए रमजान का तो 20 रोजे रखता है। क्यों, कि माहौल बन गया, अब उसमें उसका मन बन गया। 20 रकात तरावी पढ़ने का मन बन गया तो 20 रकात तरावी पढ़ना आ गया। ऐसे हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं कि अल्लाह के रास्ते में थोड़ी देर जाया करो, उससे तुम्हारा मन बन जाएगा नमाजों के पढ़ने का, अच्छे काम करने का, अच्छी चीजें के करने का मन बन जाएगा। और मन बन गया तो फिर इंशाल्लाह तुम्हारे अंदर खोट को तुम बर्दाश्त ही नहीं करोगे। हमारा ये जिस्म है ना, वो अपने अंदर कोई चीज जाए उसको बर्दाश्त, आंख में जरा कोई चीज चली जाए आंख बर्दाश्त करेगी, दांत के बीच में कोई चीज फंसे दांत बर्दाश्त करेगा, फौरन जब तक नहीं निकले चैन नहीं पड़ेगी। ये जिस्म में फांस घुस जावे बर्दाश्त करते हम, कि जिस्म में एकदम जब तक उसको नहीं निकालेंगे तब तक चैन नहीं आएगा। कान में कुछ चला गया बर्दाश्त करेंगे, नाक में कोई चीज चली गई बर्दाश्त करेंगे, जब तक नहीं निकालेंगे चैन नहीं आएगा। ऐसे जब मन बन जाता है ना अच्छाइयों का तो कोई गलत को आने नहीं देगा, और गलत आ गया तो जब तक निकालेंगे नहीं तब तक चैन नहीं आएगा कि ये गलत है, ये गलत है, खोटा खोटा है। ये मन बनना चाहिए, ये ईमान की निशानी है कि अच्छा अच्छा लगे और खोटा खोटा लगे, कि ये क्या है, कि ईमान की निशानी है। और अगर खोटा खोटा नहीं लगता कि इसका ईमान बीमार हो गया। जैसे बीमार आदमी खाना अच्छा नहीं लगता, बीमार आदमी को खाना तो खाना नहीं खाना, बुखार आ जावे तो खाना का नहीं, ये का नहीं, क्या क्यों, क्या खाना खोटा है, क्या खाना खोटा नहीं, इसका मन खोटा है। इसका इसकी तबीयत खोटी हो गई, बुखार आ गया, और वही उसका बुखार उतरते ही गए, खाना दो, पानी दो, खाना भी मांगता है पीना। कब मन अच्छा हो गया? जब मन खराब होता है तो अच्छे बुरे की तमीज खत्म हो जाती है, बुरे को भी वो तावीला करता है, पण एमा हूँ आंधो छे, हेलो भाई एमा जो वांधा जी तने खबर नहीं, तो आदमी उसकी तावील कर, खोटे की तावील करता है, खोटे को खड़ा करने के साबित करने की मेहनत करता है, उसके लिए अल्लाह के रास्ते में जाने की बातें करते हैं। आप हजरत वग वाले हो, आपके पीछे बहुत बड़ा समाज और सब लोग लगे हुए हैं, वो तुम्हारी इत्तिबा करते हैं, वो तुम्हारे पीछे पीछे चलते हैं, और तुम्हारी बात का ऐसा वजन है, मैंने बताया एक सौ सुनार की ने एक लोहार की, तो तुम्हारा थोड़ा लोहार वाला है, तुम बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत कुछ अगर तुम्हारी वग को, तुम्हारी ओड़खान को, तुम्हारी इन चीजों को तुम अच्छी वापरो तो तुम समाज में बहुत अच्छी चीजें चला सकते हो, उम्मत में बहुत अच्छी चीजें चला सकते हो, और अगर तुमने ये तरीका नहीं इख्तियार किया तो तुम में से हर एक को कोई ना कोई जरूर वापरेगा, तुम में से हर एक को कोई ना कोई जरूर इस्तेमाल करेगा। ये दुनिया स्वार्थी है, स्वार्थ में सब एक दूसरे को वापरते हैं, कोई किसी को भूलता नहीं है, जब मन जब जेब गर्म होता है सब दोस्ती करते हैं, जेब ठंडा हो गया तो दोस्ती छोड़ देते हैं। ये वग वाला है तो साहेब है, कुर्सी पर है तो उसके आसपास 10 आदमी बैठते हैं, और जब कुर्सी छूट गई तो लोग भी उसको छोड़ देते हैं। ये दुनिया स्वार्थी है, अगर अपना सही वपराश अपने कर लिया तो खोटे वपराश से हम बच जाएंगे, और अगर हमने सही वपराश की शक्लें नहीं बनाई तो लोग हमारा अपने मतलब का वपराश जरूर कर लेंगे। सही वपराश पर पढ़ने के लिए अपनी विचारधारा को अच्छी बनाना, अपनी सोच को अच्छी बनाना, अपनी फिक्र को अच्छी बनाना, अपने जज्बात को अच्छा बनाना, उसके लिए कहते हैं जमातों में जाओ, अल्लाह के रास्तों में जाकर अपनी विचारधारा अच्छी करो, अपनी सोच अच्छी करो, और उसमें उन कामों के करने के आदि बन जाओ, टेवा जाओ, टेवा जाओ अच्छे कामों के करने के, थोड़े दिन उस माहौल में रहकर उन कामों के करने के आदि बन जाओ। इसके लिए हम आपकी तश्कील करते हैं कि भाई बहुत सारा जीवन बहुत सारी जगहों पर गुजार दिया, कुछ वक्त अल्लाह के रास्ते में गुजारो, उससे तुम्हें इन सब चीजों की सोच बनेगी, फिक्र बनेगी, जज्बात बनेंगे, तो इंशाल्लाह तुम्हारा जीवन भी अच्छा बनेगा, और दूसरा तुम अल्लाह की मखलूक की खिदमत करने वाले बनोगे, तुम्हारे अपने जीवन की भी फिक्र करने वाले बनोगे। अब एक मोहल्ले में गश्त करने साथी जाते हैं, मुलाकातों में जाते हैं, अब मोहल्ले का आम मजमा एक जा रहा है और एक मोहल्ले में तुम्हारे जैसा वडील जा रहा है, अब वो आदमी गुनाह कर रहा था, अब उसको किसी को समझाने की हिम्मत नहीं है, अब मस्जिद के साथी तो 10 मरतबा उसके पास चक्कर काट कर आए तो उसने डांट दिया, जाओ भागो मैं जो भी कुछ करूं, मसलन जुए का अड्डा चल रहा था, अब मस्जिद के साथी समझाने गए तो डांट कर भगा दिया, तुम कौन होते हो, तुम्हें हमसे क्या लेना देना, भागो यहां से। अब वो तो बेचारे डर के भाग कर आ गए, अब वहां वडील कोई चला गया तो वो वडील खाली गया तो वडील के जाते ही वो कहेगा अच्छा तभी लोग आ गया तो क्या क्या रहा है तुमको, वो जिसको रहा उसने दूसरे को डांटा है, इसको डांटेगा वो तो उसके शर्म में वो गलतियां बंद कर देगा। एक आदमी मस्जिद में नहीं आ रहा था, मस्जिद के साथी उसको रोज बुलाने जा रहे थे, गश्त करते थे, मुलाकातों में वो नहीं आता था, चक्कर खिलाता था, अब वहां एक वडील चला गया मोहल्ले का तो दरवाजा खिड़खिड़ाया, ओ तभी आ भी गया, तो 100 सुनार की और एक कि इसकी 10 मिनट लगेगी, अब इसने 10 मिनट उनको समझाया, तो 10 मिनट में उसने कहा ठीक है वो मस्जिद में आ भी जाऊं वांधो नहीं। अब उसके बाद 10 मिनट उसके तो बेचारे के 10 मिनट का वपराश हुआ, लेकिन वो एक आदमी जो मस्जिद से कटा हुआ था वो मस्जिद से जुड़ गया, वो आदमी जो गलत कामों में पड़ा हुआ था उसके 10 मिनट में उसका संबंध अल्लाह के घर से हो गया। कैसा आपका अच्छा वपराश, आपकी एक एक मिनट बहुत कीमती है, आप सबकी एक एक मिनट एक एक सेकंड बहुत कीमती है, तो हम ये चाहते हैं कि आपका वपराश अच्छा हो जाए, इसके लिए आप अपनी मस्जिद के साथियों के साथ जुड़ जाओ, वो रोजाना बेचारे मोहल्ले में अच्छा माहौल बने, मोहल्ले के 100% लोग नमाजी बने, मोहल्ले के 100% नेकियां मोहल्ले में जिंदा हो जाए, उसके लिए रोज फिरते हैं। हम आपसे कहते हैं कि भाई थोड़ा सा टाइम आप उनके लिए निकालो, आपकी बहुत बड़ी आखिरत बनेगी कि तुम्हें अल्लाह ने वक्त दी है और अल्लाह ने सलाहियत दी है, तुम्हारी वक्त और सलाहियत के जरिए से जो लोग मस्जिदों से जुड़ेंगे, जो आपके दो बोल उसके जरिए से खैर पर आ गए, आप तो मर जाओगे लेकिन एक आदमी को मैं नमाजी बनाकर मारा मस्जिद से जोड़कर, मेरी 2 मिनट इस पर लगी, 2 मिनट इस, जब मैं मरूंगा मेरा दफ्तर तो बंद हो जाएगा, एक सुभानअल्लाह भी मैं नहीं बोल सकूंगा मेरा दफ्तर मेरे मौत के बाद, लेकिन जितनों को मैं भलाई पर छोड़कर गया, मैं नेकी पर छोड़कर गया, वो जब तक नेकी और भलाई करते रहेंगे वो सब मेरे खाते में आता रहेगा, मुझे हिसाले सवाब होता रहेगा, क्यों कि उन सबको खैर पर लाने का जरिया मैं बनाऊं। हमारे मौलाना उमर साहब रहमतुल्लाह एक बात फरमाते थे कि दुनिया से लोग चीजें कमा कर जाते हैं, तुम इंसानों को कमा कर जाओ, इंसानों को क्या मतलब इसका कि इस आदमी पर मेहनत करो वो अच्छा बन जाए, इस पर। अब तुम तो चले गए, ये जितने लोग भलाई के काम करेंगे तुम्हारे खाते में आएंगे क्योंकि उस पर तुमने मेहनत की है, और बाज वो लोग जिन पर तुम्हारी मेहनत होगी ना वो दुनिया में इतना काम करेंगे जितना तुमने भी नहीं किया है, एक 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 आम की गुठली होती है, एक आम की गुठली, लेकिन उसको सही ढंग से कोई दफन करे तो एक आम की गुठली में हजारों आम निकलते हैं, हजारों आम। ऐसे दुनिया में बाज लोग ऐसे होते हैं कि वो इतना बड़ा काम करके दुनिया में जाते हैं कि उसको कोई सोच भी नहीं सकता। देखो हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु दुनिया में कितना काम किया, इतना काम किया, इतना काम किया कि साहबा फरमाते हैं कि हजरत उमर के जमाने में हम एक जुमा इस शहर में पढ़ते थे, दूसरी जुमा दूसरे शहर में। इतनी तेजी से इस्लाम चला, एक जुमा इस शहर में दूसरे, इतनी तेजी से। तो इतना सारा काम हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु किया, तो वो उनके नामा अमल में जाएगा सारा, लेकिन उससे पहले किसके खाते में जाएगा, जो मेहनत करके हजरत उमर को इस्लाम में लाया था, क्योंकि वो जरिया बना। वो कौन था भाई, हजरत उमर को इस्लाम में लाने वाला कौन था भाई, बोलो ना। उनकी बहन भाई, तमाचे किसने खाए थे, उनकी बहन ने। हजरत उमर जब उनकी बहन के घर गए तो उनकी बहन कुरान पढ़ रही थी। हजरत उमर कहने लगे कि तुमने अपना दीन छोड़ दिया बाप दादा का, यूं करके इतना मारा के लहू लुहान हो गई। फिर वो बहन ने समझाया, हाँ बे भाई, अगर हमको इसलिए मारा जाता है कि हम मुसलमान हो गए तो सुन, हम मुसलमान हो गए। यूं करके वो बात समझाई, अल्लाह की शान वो भाई को बात समझ में आ गई और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में गए और इस्लाम ले आए। तो बहन ने तमाचा खाए, बहन लहू लुहान हो गई, लेकिन वो उमर जिसने तमाचे मारे थे उसने इतना काम दुनिया में किया कि उसको कोई बयान नहीं कर सकता। तो जैसे वो हजरत उमर को मिलेगा, वो हजरत उमर से पहले किसको मिलेगा, उनकी उस बहन को मिलेगा जिसने तमाचे खाए हैं। ऐसे हमारा जीवन बहुत थोड़ा है, हम तो ज्यादा दुनिया में इबादत भी नहीं कर पाते हैं। वायरिंग करके जाओ, बियारण करके जाओ, यहाँ भी बीज डालो, यहाँ भी, यहाँ भी, जितने तुमने लोगों को लगाया वो तुम्हारे मरने के बाद जितना करेंगे वो तुम्हारे। अभी देखो मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, अब तुम में से जितने नेकी के काम करोगे उसका खाता मेरे में भी आएगा, अब मुझे बाद में मिलेगा, मुझे जिसने तबलीग में लगाया उसको मेरे से पहले मिलेगा। बोलो मिलेगा नहीं मिलेगा, अरे बोलो भाई मिलेगा नहीं मिलेगा। तो ये ऐसी कमाई के दिन है, तो शैतान ये काम नहीं करने देता, वो तबलीग में नहीं लगने देता। हमारे एक बुजुर्ग थे वो कहते थे, शैतान को अदावत है दावत से, शैतान को अदावत है दावत मतलब तबलीग की मेहनत से। क्यों कि वो एकला एकला अपनी नमाज पढ़ के मर जावे, वो अपने अपने रोजे रखकर मर जावे तो कोई वांधा नहीं, पर ये तो हजारों लोगों को रोजा रखता हुआ बना कर जाएगा, हजारों को कुरान पढ़ता हुआ बना कर जाएगा, हजारों को अल्लाह के नाम पर खर्चा करने वाला बना कर जाएगा, ये तो बहुत बड़ी आखिरत बना कर जाएगा। मसलन ये तीन दिन गया, अब 15 आदमी उसके साथ है, अब 15 आदमी साथ है, अब 15 आदमी नमाजी बनेंगे, 15 आदमी दीनदार बनेंगे। फिर जिस गामड़े में गए उस गामड़े में उसने काम किया, वहां लोगों को दीनदार बनाएगा, तो ये तो बहुत बड़े कमाई करके जाएगा। तो शैतान अक्सर लोगों को तबलीग में नहीं लगने देता, क्योंकि उसमें कमाई होलसेल में मिलती है। कैसे मिलती है बोलो, होलसेल में, थोक में मिलती है। अब मान लो कि एक वडील गया जमात में, अब उसके दोस्त सर्कल होंगे तो उसके देखा देखी दूसरे 15 तैयार हो जाएंगे। हाँ अभी हमारे वहां लूनावाड़ा एक गाँव है, वहां का एक जिम्मेदार वो तैयार हुआ 3 दिन, तो उसके साथ 32 आदमी तैयार हो गए। कितने आदमी, वो बड़ा जरा वजनदार आदमी है, जैसे ही वो तैयार हुआ 32 आदमी। अब ये एक आदमी खड़ा क्या हुआ, 32 खड़े हो गए। अब ये 32 घरानों के वडील, ये अंजुमन से जुड़े हुए, कोई सोसाइटी से जुड़ा हुआ, अब अगर इनकी विचारधारा अच्छी हो गई तो ये सारी लाइनों में दीन को दाखिल करेंगे। अब शैतान इसको थोड़ी पसंद करेगा कि वडीलों की विचारधारा अच्छी हो, वो इसको थोड़ी पसंद करेगा, इसको पसंद नहीं करेगा। इसलिए क्या करता है कि इनको वो तबलीग में लगने ही नहीं देता। तबलीग में आदमी होलसेल में कमाई करके जाता है, इसलिए आप हजरत भी ऐसे वडील हो और आप मोहब्बतदारी हो, तो आप हजरत भी जब चलोगे ना तो आपके साथ आपके मोहल्ले के, आपकी बस्ती के ऐसे लोग जाएंगे, तो आपके तो 3 दिन लगेंगे लेकिन आपकी बरकत से मोहल्ले के 15 आदमियों के 3 दिन लग जाएंगे। आपके तो 1-40 दिन लगेंगे लेकिन मोहल्ले के 15 आदमियों के चिल्ला लग जाएगा। आप तो 1-4 महीने लगाओगे लेकिन मोहल्ले के कितने लोगों के, वो सबकी विचारधारा बदलेगी, सबके सोच बदलेगी, सबके फिक्र बदलेगी, वो अच्छा जीवन जीने वाले बनेंगे, फिर अपने समाज और कौम को अच्छा जीवन लेकर चलने वाले बनेंगे। इसलिए वो अक्सर मुभादारी लोगों को ऐसे कामों में लगने नहीं देता। वो बुजुर्ग कहते थे कि शैतान को अदावत है दावत से, तो उसको तो इससे अदावत है, हमको उससे अदावत करनी है शैतान से, कि तो हमको इसमें नहीं लगने देता, हम तो जरूर लगकर रहेंगे। हम क्या करके रहेंगे, हजरत जी रहमतुल्लाह अलैह एक बात फरमाते थे, भाई करोगे तो पाओगे, नहीं करोगे तो दोबारा मौका नहीं मिलेगा, पछताओगे। आप इसको तश्किल न समझे कि तुम तश्किल कर रहे हो, हमारे ऊपर कोई एहसान नहीं करेगा, कोई किसी पर नहीं, हर आदमी अपने ऊपर एहसान करेगा, अपनी कबर को अपनी कबर पर एहसान करेगा। आप सोचो थोड़ा सा कि जिस घर में हम अभी रहते हैं उस घर में समाज में बहुत सारे मोहल्ले हैं, और उसमें एक मोहल्ला हमारा है, उस मोहल्ले में हमारा एक घर है, वो चारपाई जिस चारपाई पर मैं सोता हूँ रात को अंधेरा हो जाए, अंधेरा, और उस बिस्तर पर कीड़े मकोड़े आ जाए, चूहा आ जाए, छछुंदर आ जाए, कसारी आ जाए, उस घर में मैं उस बिस्तर पर सोऊंगा, एकदम लाइट चालू करूंगा, अरे भाई क्या हुआ, कोई जानवर आ गया, कोई कीड़ा आ गया, एक छछुंदर आ जाए, एक कीड़ा, हम जिस बाथरूम में गुसल करने बैठे थे दो चार कसारियां आ जाए, कसारियां, हम ऊंचे नीचे हो जाएंगे, कसारियां आ गए, अलग कसारियां कितनी, हाथी जितनी थोड़ी है कि वो मरेगी नहीं, डब्बा मारेगा तो भी मर जाएगी, इंतजार रखेगा तो भी, हम तो इतनी कसारी से भी डर जाते हैं, दो पांच छिपकलियां आ जाए उससे डरते, अभी काटी नहीं है वो छत पर है, बाथरूम की टॉयलेट की छत पर है, हम उतने से भी डरते हैं। ये कब्र जिसकी तरफ हम जाएंगे ना, वो कब्र रोजाना ऐलान करती है, मैं तन्हाई का घर हूँ, मैं कीड़े मकोड़ों का घर हूँ, अब सोचो कीड़े मकोड़ों का घर हूँ, मैं बेगानगी का घर हूँ, मैं बेगानगी का घर हूँ, ये रोजाना कब्र ऐलान करती है। हमारे नबी ने फरमाया कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग है या जहन्नम के घरों में से एक घड़ा है। हमारे नबी ने फरमाया कब्र में जो बात होती है अगर लोगों को पता चल जाए, लोग अपने मुर्दों को दफनाना छोड़ दें, उस कब्र में हमारा ये जिस्म उन कीड़े मकोड़ों से बच जाए, उसके लिए इस जिस्म पर मेहनत करो, वरना कोई हमारे दुख का भागीदार नहीं होगा। हमारी गलतियां जीवन में होती रहेगी, हमने सही जीवन जीना नहीं सीखा है, जीवन में गलतियां होती रहेगी, हमें पता भी नहीं होगी क्या क्या हम गलतियां करते हैं। हजरत शेख ने फजल सदकात में वाक्य लिखा जीवन की गलती का, कि एक आदमी हज में जा रहा था, उसका इंतकाल हो गया, तो उसको वहीं रास्ते में दफन करने के लिए कब्र खोदी, तो कब्र में से अजदहा निकला, दूसरी कब्र खोदी, दूसरे में से अजदहा निकला, तीसरी खोदी। उस जमाने में गालिबन अब्दुल्लाह इब्ने उमर या अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास हयात थे, तो उनसे कहा कि हम इसको दफन करना चाहते हैं लेकिन इसकी कब्र में से अजदहा निकलता है, तो उन्होंने क्या कहा, अगर तुम पूरी दुनिया की जमीन खोदोगे इसके लिए अजदहा ही कब्र में से निकलने वाला है, कर उसको इसी के साथ दफन कर दो। उसको दफन किया, जब वो वापस आए तो अब उस खानदान वालों से पूछा कि इसके साथ ऐसा ऐसा हुआ, वो क्या भूल करता था, तो कहा ये भूल ये करता था, ये गेहूं का व्यापारी था, उसके साथ तोल में भूसी धोखा देकर बेचता था, एक भूसी की भूल का असर यह है। पता नहीं हमारी जिंदगी में तो डगले ने पकले भूले हैं, अगर भूलों का एहसास नहीं हुआ और सही जीवन जीने के तरीके नहीं सीखे, हमारी कब्र में हमारा कोई भागीदार नहीं होगा। ये तबलीग में दो चीजें हैं, इन भूलों का एहसास जिंदगी में हो जाए और सही जीवन जीने वाले बन जाएं, अब तक जो भूले हुई है उससे माफी मांगने वाले बन जाएं और उन हुकूक को अदा करने वाले बन जाएं, तो सस्ता सौदा है। और जो वडील बन जाता है ना, उसकी उसकी भलाई भी बड़ी और उसकी भूल भी बड़ी। लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई, उनके बोल का बहुत वजन था, सही बोल बोलना नहीं सीखा था, गलत बोला था और गलत बोल के जरिए से बहुत सारी गलतियां उसके जरिए से चल पड़ी। अगर इन चीजों की तौबा नहीं हुई और सही जीवन जीना नहीं सीखा, तो हम हमारे दुख का कोई भागीदार नहीं होगा। इसलिए सलामती है कि जल्दी से अपना वक्त लगाएं, सही जीवन जीने के आदि करें और अपनी भूलों का हमें अल्लाह करे, अगर गलतियां हो रही है तो उसका सही एहसास होकर सही जीवन जीने वाले बन जाएं, और हम अपने जीवन से जो फायदा उठा सकते हैं उन जीवन से फायदा उठाने वाले बन जाएं, ताकि हमारी कब्र अच्छी हो जाए, हमारा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के पास जाना अच्छा हो जाए। कल अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को चेहरा दिखाना है, उनके हाथ से जामे कौसर पीना है, उनके सिफारिश का हकदार बनना है। इसलिए आप हजरात को जमा करते हैं यहाँ कि अल्लाह ने आपको यहाँ बड़ा बनाया है, हम तो चाहते हैं अल्लाह आपको आखिरत का भी बड़ा बना दे। अल्लाह ने आपको यहाँ ओरखण वाला वग वाला बनाया, अल्लाह आपको आखिरत के में भी ओरखण और वग वाला बना दे। अरे उसके लिए अच्छा जीवन जीने पर पड़ोगे तो यहाँ के भी बड़े बने हो, वहाँ के भी बड़े बन जाओगे। और खुदा ना करे अगर इसकी फिक्र नहीं की, तो देखो एक आखिरी बात बताऊं, अगर उसकी फिक्र नहीं की तो अच्छा बताओ, चोर मालदार के वहां आता है या गरीब के वहां आता है? अरे बोलो किसके पास आता है? तुम सब मालदार लोग हो, वग के मालदार, ओरखण के मालदार, कुर्सी के मालदार, किस वग से तुम बहुत कुछ कर सकते हो? वग से बहुत कुछ कर सकते हो, कुर्सी से कर सकते हो, आंखों की शर्म से कर सकते हो, तो शैतान औरों के मुकाबले में तुम पर ज्यादा हमला करेगा। शैतान तुम्हारे लिए चोरी करने आएगा, इसको पकड़ लो ये हजारों को इसके साथ जुड़े हुए हैं, इसको खोटा कर दो ये हजारों को खोटा कर देगा। शैतान मालदार चोर जो है ना, वो मालदार के वहां आता है, तुम्हारे पास ये अलग अलग सलाहियतें हैं, तो शैतान तुम पर औरों के मुकाबले में ज्यादा हमला करेगा। तुमने मधुराणी देखी है, मधपुड़ा होता है, मधपुड़ा उसकी एक रानी होती है, उसको एक को पकड़ लो तो उसको जहां बिठा दोगे सारी मक्खियां वहीं बैठेगी। मध की रानी जो होती है ना, उसको तुम जहां बिठा दो सारी मक्खियां वहीं बैठेगी। तो वो शैतान भी समझता है ये रानी है, इसको जहां बिठा दोगे पूरी समाज वहां बैठेगी, पूरी सोसाइटी वहां बैठेगी, और अगर ये सही रुख पर आ गया ये सबको सही ले जाएगा। तो शैतान पब्लिक पर ज्यादा मेहनत करेगा या बड़ों पर ज्यादा मेहनत करेगा? अरे बोलो तो खरे कि तुम्हारी वक्त खराब हो जाए, तो शैतान औरों के मुकाबले में तुम पर ज्यादा मेहनत करेगा। हमें उसके हाथ में नहीं आना और चौकस जीवन जीना है, चौकसाई वाला सजग जीवन, ताकि हम खोटे का जरिया ना बने, हम भलाई का जरिया बनकर इस दुनिया में भी भलाई करने वाले बने और भलाई को छोड़कर जाने वाले बने, और मौत के बाद भी हम अल्लाह को पसंद आ जाएं और हमारे नबी को पसंद आ जाएं। इस नबी की उम्मत के लिए अगर काम करके गए तो तुम्हें किसी का सहारा मिले न मिले, हमारे नबी का सहारा मिल जाएगा। हमारे नबी की उम्मत का काम करके जाओगे, हमारे नबी अलैहिस्सलाम के हौज़े कौसर पर जगह मिल जाएगी, उनके हाथ से जामे कौसर पीने को मिल जाएगा। इसके लिए अपने इस जीवन को ठीक करने के लिए जरूर अल्लाह के रास्ते में जाओ। अल्लाह के रास्ते में ले जाने से आदमी अच्छे जीवन का आदी बन जाता है। जाओगे इंशाल्लाह? कौन कौन जाएगा जमात में? अल्लाह तौफीक दे, कबूल फरमाए। मैं तो कह रहा हूँ नियत करो जल्दी से जल्दी, चार चार महीने जाएंगे और चार चार महीने जाकर अपने जीवन को संभाल लेंगे। मैंने कहा किसी पर रहम मत खाना, अपने ऊपर रहम खाना। वो कब्र में अगर मेरा गलत वपराश हो गया तो कब्र कीड़े मकोड़ों की जगह है, कोई वहां मेरा भागीदार नहीं होगा, कोई मेरा भागीदार नहीं होगा, और मेरे अच्छे का भी मुझे भुगतना है, मेरे खोटे का भी। आदमी इसी बोल से आखिरत बनाता भी है, आखिरत को खराब भी करता है। आदमी अपने वपराश से आखिरत बनाता भी है और आखिरत को खराब भी करता है। तो अपना वपराश भी अच्छी करें, अपनी रहनी करनी भी अच्छी करें, अपनी सब चीजें, उसके लिए अल्लाह के रास्तों में जाकर अच्छा जीवन जीना सीखना है। और जब तक घर पर रहें, मस्जिद के साथ ही, माशाल्लाह तुम्हारे वहाँ मस्जिदवार जमातें बनी हुई है, उनके साथ जुड़कर रहो, मुलाकातों में जाओ, गश्तों में जाओ, तुम्हारा वजन वपराश में आ जाएगा, तुम्हारी शर्म से लोग अल्लाह के घर में आ जाएंगे, तो तुम्हारा वपराश होगा और लोग अल्लाह के घर वाले बनेंगे और वो तुम्हारे खाते में कयामत के दिन आएगा। जुड़ोगे अपने घर अपने मस्जिदों में? कौन कौन जुड़ेगा? अल्लाह तौफीक दे। तो और अल्लाह के रास्ते में कौन कौन जाएगा? अल्लाह तौफीक दे। महीने में तीन दिन जाया करो, महीने में अपने साथियों की तशकील करो, तीन तीन दिन जाओ तो तुम्हारे साथी भी अच्छी विचारधारा के बनेंगे। और गांवों में भी जाओ तो जिस गांवों में तुम जाओगे उस गांव में कुछ काम करने वाला बन जाओगे, तुम्हारी शर्म से उस गांवों में कुछ काम हो जाएगी। मोहल्लों में गश्त करो और रोजाना दो पांच मिनट अल्लाह रसूल की बात सुनो। ये अल्लाह रसूल की बात कहाँ सुनोगे? ये फजाइल अमाल फजाइल सदकात की जो किताबें हैं ना, उसमें दो पांच मिनट रोज बैठो। उसमें क्या है पता है? मुसलमान कैसा होना चाहिए वो उसमें लिखा हुआ है। मुसलमान इबादत में कैसा हो, मुसलमान लेवड़ देवड़ में कैसा हो, मुसलमान रहनी करनी में कैसा हो, जब हम उसको रोज सुनेंगे तो हमारा जीवन अच्छी आदतों वाला बनता जाएगा। जब हम उनको सुनेंगे ही नहीं तो फिर दूसरी बातें रोज कानों पर पड़ती है, जो बातें कानों पर पड़ती है हम ऐसे बन जाएंगे। अच्छी बातें सुनेंगे तो अच्छे वाले बन जाएंगे। इसके लिए रोजाना दो पांच मिनट मस्जिद में तालीम होती है, दस मिनट होती है, उसमें जरूर बैठो। अपने बच्चों को ये बातें सुनाओ। हमारे बच्चों को हम सारी बातें करते हैं, सारे चर्चे करते हैं, अगर हम अपने घर में चर्चा नहीं करते तो अल्लाह रसूल की चर्चा नहीं करते। ये सारे बैठा हुआ मजमा सोचे कि मैं अपने घर में कौन सी बातें करता हूँ, सारी दुनिया भर की बातें करता हूँ, धंधे की, रिश्तेदार की, दोस्त की, सारी बातें करते हैं। मेरा घर मुसलमान का घर है और मेरे घर में मैं अल्लाह रसूल की बात नहीं करता। मैं 24 कलाक में मैं क्या मेरे घर में अल्लाह रसूल की कोई बात करता हूँ? मेरा घर इस्लाम का है और मेरे घर मुसलमान का है और मेरे घर में अल्लाह रसूल की कोई बात नहीं। ये फजल अमल फजल सदकात की जो किताब है ना, उसको 5-10 मिनट रोज घर में पढ़ो, ताकि हमारे बच्चों में इस्लाम क्या होता है, मुसलमान कैसा होना चाहिए, उसका एहसास पैदा हो जाए। इसलिए मस्जिद की तालीम में भी बैठो और घर की तालीम भी, घर में भी रोजाना थोड़ी देर तालीम करो। करोगे तालीम? अल्लाह तौफीक दे। और जमातों में कब जाओगे? जी जी, ये कह रहे हैं जल्द से जल्द जाएंगे। और कब जाएंगे दूसरे लोग? आप कब जाओगे? ये कह रहे हैं 7 जनवरी को जाएंगे आप, 7 जनवरी से। और कौन कब जाएगा बताओ बताओ जी, कब से जाओगे? इसमें से किसके किसके 4 महीने लगे हैं, जरा हाथ उठाओ। माशाल्लाह, अब आप लोग दोबारा 4-4 महीने लगाओ। और जिनके नहीं लगे वो तो तय कर लो, ये दिसंबर पूरा हो रहा है, आइंदा साल जल्दी से जल्दी 2-4 महीनों में इंशाल्लाह तरतीब बनाकर जरूर 4-4 महीने की कोशिश कर लेंगे। करोगे? कौन कौन कोशिश करेगा? अल्लाह तौफीक दे। और हर महीने 3 दिन जाया करो, कम से कम 3 दिन चार्जिंग हो जाएगा। मोबाइल का चार्जिंग उतर जाता है तो उससे बात नहीं होती, ऐसे इस्लाम का चार्जिंग होना चाहिए। हमारे नबी ने क्या फरमाया पता है? ईमान ईमान ऐसे मैला हो जाता है जैसे कपड़े मैले हो जाते हैं। कपड़े मैले होते हैं तो क्या होता है? खुशबू आती है, बदबू आती है। कहीं ईमान वाला जब मैला हो जाता है उसका ईमान, उसमें भी बदबू आती है। वो बदबू क्या होती है पता है? आंखों से गंदा देखता है, कानों से गंदा सुनना शुरू कर देता है, जबान से कैसा भी बोलता है, दिल दिमाग को कहीं भी विचारता है, हाथ पैरों का वपराश गमे तेवा भी करता है, ये बदबूदार हो गया, बदबूदार। एक जगह हमारे नबी ने फरमाया कि अपने ईमान को ताजा करते रहो, ईमान को ताजा करते रहो, तो ये ईमान को ताजा करना पड़ेगा। महीने में तुम तीन दिन जाओगे ना तो तुम्हारा इस्लाम और ईमान ताजा हो जाएगा। वरना तो आदमी ऐसी भूलें करता है कि बाज़े मर्तबा जबान से ऐसे बोल बोल देता है कि उसका इस्लाम से भी निकल जाता है, निकाह भी टूट जाता है। हाँ, जब उसके अंदर इसका एहसास नहीं होता तो खोटी खोटी हरकतें करता है, इस्लाम भी निकल जाता है और उसका निकाह भी टूट जाता है। हाँ, अच्छे बुरे की तमीज उसके अंदर, कि इस्लाम की बीमारी की बात है, किसका इस्लाम मेला हो गया, इसका इस्लाम पुराना हो गया, उसको ताजा करो। जैसे मोबाइल को चार्ज करते हो ना, ऐसे इस्लाम को ताजा करो, दीन को ताजा करो, चार्जिंग करो, चार्जिंग। महीने में तीन तीन दिन जाओगे ना तो ये चार्जिंग होता रहेगा। जाओगे तीन तीन दिन, कौन कौन पाबंदी से हर महीने तीन दिन जाएगा? और अपनी मस्जिद में जुड़ना, गश्त में जुड़ना, मुलाकातों में जुड़ना, और रोजाना तालीम करना अपनी मस्जिद और घर की। और तुम्हारे शहर में हफ्तावार इज्तिमा होता है मरकज का दिन, उसमें भी जाया करो। अठवाड़िये में एक दिन, अठवाड़िये में 168 कलाक होते हैं, 168 कलाक, एक कलाक अल्लाह के रास्ते, अल्लाह के घर में जाकर अल्लाह रसूल की बात सुन लिया करो। देखो तुम रोजाना मार्केट में पता नहीं कहीं कहीं की अला बला सुनते हो, पता नहीं कौन कौन हमको क्या क्या बातें सुना जाता है। आदमी जो बातें सुनता है ना, ऐसा विचार उसका बनता है, जो बातें सुनता है ना ऐसे विचार बनता है। हाँ, सुनने का असर बहुत होता है तबीयत पर। आदमी को एक बात सुनाओ, दो बात सुनाओ, तीन मरतबा सुनाओ, एकदम उसका असर ले लेता है। अल्लाह रसूल की बात हम 168 कलाक में एक कलाक भी नहीं सुनेंगे, एक कलाक भी नहीं सुने, पता नहीं हमारा दिमाग कबाड़ा बन जाएगा। कम से कम अठवाड़े में एक मरतबा तो अल्लाह रसूल की बात सुने। तो इसलिए पाबंदी के साथ मरकज पर जाओ। असर से, असर के बाद बयान होता है। आपके वहां मंगरोल में कब मरकज होता है? जुमा के दिन, जुमा के दिन असर से जाओ। असर बाद बयान होता है, मगरिब बाद बयान होता है। और वेरावल में कब होता है? जुमेरात को। तो वेरावल के लोग जुमेरात को जाएं। जूनागढ़ में कब होता है? जुमेरात को। तो जूनागढ़ के लोग जुमेरात में जाया करें। कौन सी मस्जिद में होता है जूनागढ़ में? मरकज, मरकज सब ओढ़कते हैं मरकज। और मांगरोल में भी मरकज पर होता है। और वेरावल में भी मरकज का नाम जानते हो तुम क्या है? मीनारा मस्जिद। और तुम्हारे वहाँ कौन सी मस्जिद मांगरोल में? चंपा मस्जिद, मरकज मस्जिद। और जूनागढ़ में ढाल मस्जिद। भाई सब लोगों ने सुन लिया कौन सी मस्जिद है? तो जुमेरात जुमा और जुमेरात जुमा जाया करो। जाओगे? चलो अल्लाह तौफीक में कबूल फरमावे। आप हजरत आए, हमें बड़ी खुशी हुई, आप लोगों ने हमारी भी इज्जत की। हमने अल्लाह के दीन के नस्बत पर आपको बुलाया था और आपने अल्लाह के दीन की भी इज्जत की कि दीन के लिए आपको बुलाया था। तो आपने हमारा इकराम किया, अल्लाह के दीन का इकराम किया, अल्लाह आपका इकराम फरमावे। और जैसे आपने अल्लाह के दीन की इज्जत की, अल्लाह आपको दुनिया में भी इज्जत से नवाजे और अल्लाह आपको आखिरत में भी इज्जत से नवाजे। जैसे माशाल्लाह आप लोग अभी रहे, अभी दिन भर इज्तिमा रहेगा, जोहर बाद भी मजलिस होगी, असर बाद भी होगी, मगरिब बाद भी होगी, कल फजर बाद भी होगी, और कल 10 बजे आखिरी मजलिस होगी, फिर उसमें दुआ होगी। तो हम जिस तरह अभी इस मजलिस में रहे, इस तरह इंशाल्लाह अभी से लेकर दुआ तक सारी मजलिसों में भी रहने की पूरी कोशिश करें। करोगे इंशाल्लाह? बहुत अच्छी बात, अल्लाह जज़ाए खैर दे। ठीक है, सुभानअल्लाह वबिहमदिही, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद वअला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد اذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا يا الله ہمارے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما یا اللہ عفو کا عافیت کا رحم کا کرم کا معاملہ فرما فضل کا معاملہ فرما ہر قسم کے ہر خیر مقدر فرما تمام قسم کے تمام شرور آفات بلیات سے پوری پوری حفاظت فرما اے اللہ ہمارے جمع ہونے کو بے انتہا قبول فرما یا اللہ ہمارے کہنے سننے کو قبول فرما یا اللہ ہماری کمی کو تہیوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما اے اللہ ہمارے ان سارے ساتھیوں نے اچھی زندگی گزارنے کا اور اچھی زندگی پر پڑھنے کی عزائم اور نیتیں کی ہے یا اللہ تو وہ زندگی ہم سب کے لیے آسان فرما یا اللہ اس زندگی کو حاصل کرنے کے لیے جن اسباب کو اختیار کرنا ہے اس کا اختیار کرنا آسان فرما اور یا اللہ ہمیں ذریعہ بہانے کے طور پر استعمال فرما کر بھلائیوں کو ہمارے ذریعے سے وجود عطا فرما برائیوں کے ختم ہونے کا ہمیں تو ذریعہ فرما اور یا اللہ جس وقت کے جس عمل میں جس نیت کے ساتھ مشغول ہونے کو آپ پسند کرتے ہوں اس وقت کے اس عمل میں ہمیں اپنے اس رضا والے کاموں میں تو ہمیں مشغول فرما آپ کے ناراضگی والے کاموں میں مشغول ہونے سے تو ہماری حفاظت فرما اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی خیر کے لائن کی دعائیں مانگی ہم بھی مانگ کے عطا فرما جن شر برائی سے پناہ چاہیے ہم بھی پناہ چاہتے ہیں، پناہ نصیب فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں ہماری دعا کو قبول فرما. جزا اللہ عنہ نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ برحمتہ. جزاکم اللہ خیرا.